ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इस कथा सत्र के षष्ठ दिवस है। कल हम कथा विश्राम दिए थे श्री श्री कृष्ण बलराम प्रथम बार त्रयोदशी तिथि में मथुरा में दो घड़ी दर्शन करने के लिए नगर दर्शन में गए थे और इस दो घंटा नगर में परिदर्शन करके पूरे मथुरा जनपद में तबाह मचा दिए। राजा से लेकर प्रजा तक सब चिंतित है। वो तो बड़े हंसी खुशी वापस आ गए। जो सब भेष पोशाक चंदन माला ये सब धनुषशाला में विसर्जित करके नहा धो करके चुपचाप आ गए। शाम के समय अपने जो टेंट लगाए थे यमुना किनारे मथुरा नगर के बहिर प्रदेश में, उनके सब गोपों के साथ ब्रजपतियों के साथ यहाँ पहुँचे। गरम गरम खीर खाए और विश्राम किए। थक करके आए थे भ्रमण करके, बहुत कुछ कुश्ती कसरत करके आए थे, खा पी के सो गए। लेकिन उनके आने के बाद पूरे मथुरा नगर के पुरवासी नर नारी कोई एक भी पूरे रात नहीं सोए। जहां तहां चौराहे पर, मंदिर में, दुकान में, घर में, जहां तहां देखो अपना अपना झुंड बना लिए सब लोग। स्त्रियां अपने अपने हिसाब से, वयस के हिसाब से, कौन कितना उम्र है उम्र के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, दोस्ती के हिसाब से, कोई व्यापारी वर्ग है कोई और वर्ग है, इनके हिसाब से जैसे तैसे अपने अपने ग्रुप बना करके सब के मन में एक ही चिंता, एक ही वार्ता। किसके बारे में? राम और श्याम के बारे में। कैसे अद्भुत है, कितने पराक्रमी है। अब सभी का मन में यही चिंता पड़ी है। सब करते हैं, अरे देखा नहीं कैसे किया उन्होंने। अच्छा हुआ कि महाराज कंस नहीं आए धनुशाला में, और संसार से प्रसिद्ध आपने सुर असुर विजेता अजय सेना सेनापति के साथ भेजा गया था। कोई दूर नहीं, आपने घर में आपने भवन के अंदर, और एक भी नहीं बचे। सारे सब बिछ गए। मारने वाले कौन थे? दो ही तो लड़के थे। अच्छा हुआ तो कंस महाराज नहीं आए, नहीं तो उन्हीं के समाप्ति हो जाता। लोगों में तो अब घर करके बैठ चुका है कि यही वास्तविक हमारे स्वामी है, यही भगवान वासुदेव है। उनका रोम रोम से यही शब्द निकल रहा है कि भगवान वासुदेव की जय हो। इस प्रकार कोई बोलते हैं, अरे तो दो भाई थे, अरे देखना काल आकर कंस को वध करेंगे, राजा तो वही बनेंगे और क्या। हाँ तो राजा के लायक है, कौन सा कमी है उसमें, लेकिन दो जन है, कौन राजा बनेगा। कोई दूसरा बोलते, अरे तुझे पता नहीं इस कुल में तो बड़े कुमार राजा बनते ही नहीं, छोटे राजा बनते हैं। ना अरे वो छोटा थोड़ी राजा सिंहासन बैठेगा, बनेगा थोड़ी, बड़ा चंचल है। अरे भले सिंहासन में ना बैठे, राजा ना बने मथुरा के, लेकिन आज दो घड़ी में तो मथुरा के जन जन के हृदय आसन पर तो बैठ चुका है, सबका राजा, सभी ने मान चुके हैं उनको, और बैठना क्या, और सिंहासन में क्या बैठेगा। जितने वृद्ध थे, बड़े उम्र के, वो आपस में मिल करके बात कर रहे थे, सब उनके साथ संबंध जोड़ना चाह रहे थे। बोले अगर वो आएंगे तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, जिसे हम कहीं से काम निकालने के लिए अपने संबंधी ढूंढते हैं तो बोलेंगे अरे अक्रूबी मेरा तो दूर से भाई लगेंगे, तो उनका चाचा लगेंगे, तो मेरा भी तो होंगे ना भतीजा, मेरा भतीजा होंगे, मुझे आकर प्रणाम करेंगे, देखेगा नहीं, जब आएंगे मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे तो रिश्ता में भतीजे लगेंगे वो। दूसरे बोलते मेरे बेटे लगेंगे। इसी हिसाब से सब अपना अपना संबंध ढूंढते हैं। जितने दुर्बल लोग थे वो सोचते हैं, अरे देखा नहीं इस माली सुदामा को क्या कर दिए, उस बूढ़े दर्जी को क्या कर दिए, अभी तो हमारा काम बना और कोई गरीबी नहीं रहेगा, पूरे जदुवंश में, पूरे मथुरा में सब का मनस्काम पूरा हो जाएगा, सब जुवा हो जाएंगे, सब संपत्तिवान हो जाएंगे, यशस्वी हो जाएंगे। जितने युवक थे वो बोलते हैं कि वो तो हमको भैया बुलाएंगे, हमसे छोटे छोटे तो हैं, हमको भाई बोलेंगे, वो तो हमारे भैया लगेंगे और क्या। तो बालिकाएं थी वो बोलते हैं कि हमको ही बहन बोलेंगे, ऐसा थोड़ी हमारे भाई लगेंगे, हमको ही बहन बोलेंगे। जो कुल वधुएं थी, शादी की हुई थी, वो बोलते थे तो हमारा भी तो देवर लगेंगे, आपका थोड़ी, हमारा भी तो देवर होंगे, देखना आकर के हमको प्रणाम करोगे भाभी कह करके। तो उनके बालिकाएं बोले मजाक करके, अरे भाभी अभी से उतावली हो रहे हैं, भैया को बोल देंगे, अरे बोल देना जा करके, दूसरे शादी करना है तो कर ले, हमारे गोरे शाम देवर तो कुशल रहे बस, और किसी को डर रहे। और बड़ी बड़ी वृद्धाएं थी, उनका तो वात्सल्य उमड़ रहा है, उन्होंने आशीर्वाद की झड़ी लगा रखे हैं, वो बोले धन्य है देवकी बहू, कितने कष्ट सहा तूने वर्षों तक, ऐसे कुमार जन्म दिया, सौभाग्य की राशि है। और उनका मन में तो बिल्कुल वात्सल्य मचल रहा है। और जो ब्राह्मण वर्ग थे वो तो बोलने, देखा नहीं काल दो घंटा के लिए आए थे, जितने भी हम ब्राह्मण जनेऊ डाले थे सबको नतमस्तक होकर झुक करके प्रणाम कर रहे थे, कितना सम्मान है हमारे प्रति, मैं तो आज रात गीता पाठ करूंगा उनके लिए, मैं तो ये स्तोत्र पाठ करूंगा उनके लिए, हो अभी लग रहा हूं पाठ करने, उनका कुशल हो मंगल हो, सब आशीर्वाद देने लगे। और जो वैश्य और शूद्र वर्ग थे बोले, वो तो हमारे स्वामी है, हम तो वासुन का दास है, वही तो हमारे स्वामी है, और किसी को हम स्वामी मानेंगे नहीं। इस प्रकार पूरे जनपद के छोटे से बड़े पर्यंत सभी मनुष्य उन्हीं के चिंता में, उन्हीं के वार्ता में पूरे रात्रि बिताए, होना भी चाहिए, है कि अद्भुत पराक्रम है, देखते देखते क्या क्या नहीं कर गए। इस महाधनुष, इस धनुष पर कंस का बड़ा गर्व था, कितने अहंकार था धनुष के लिए। धनुष यज्ञ करके सबको हृदय में बड़े भय मचा रखा था। देखा नहीं, इस धनुष को ऐसे तोड़े जैसे हम एक मूली तोड़कर खाते, मूली जैसा तोड़ दिया उसको, और तोड़ कर क्या बोल रहे हैं, अरे तो जीर्ण हो चुका था पुराना, इसलिए टूट गया, मैं थोड़ी तोड़ा उसको, ऐसे कर रहे थे। तो उनका वीरत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, और जाने न जाने सबका उनके प्रति श्रद्धा भक्ति मान्यता भाव, सब नतमस्तक होते दूर से सोच सोच करके। सारे नगरवासी का ऐसा चिंता चल रहा है, राजभवन में क्या हो रहा है। राजभवन में महाराज कंस जब वो धनुष का टूटने का शब्द सुना पड़ा था, मैं कल बता दिया था कि क्या हाल उनका हुआ था, सेना सहित सेनापति मर गए, कोई मैसेज देने के लिए आए नहीं, लेकिन महाराज कंस भी असावधान नहीं थे, गुप्तचर नियुक्ति किए थे। जिस समय से कृष्ण बलराम मथुरा पधारे हैं उसी समय से उन्हीं के साथ साथ वही जन भीड़ के बीच में बिल्कुल गुप्तचर दोनों ओर से चल रहे थे, उनके साथ साथ सारे नोट कर रहे थे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। रात को आकर के सारे मैसेज दिए कंस को, कंस बैठे बैठे ध्यान से सुना सब क्या क्या कर रहे थे। सुना कि जैसे दोनों लड़के अपने साथियों के साथ मथुरा में प्रवेश किए, सारे नगरवासी तो उतावली होकर के उनके ओर सम्मान करने पूजा करने दौड़े, पागल होकर के सारे नर नारी जयघोष करने लगे, उनके पुष्प अक्षत दुर्बादल उनके ऊपर फेंकने लगे। कंस बोल रहा कि एक दिन मेरे ऊपर इसे नहीं किए, मैं उनका महाराजा हूं, इसे कभी नहीं किए, ये सारे बदमाश है, सबको काल देखता हूं, पहले उन दो लड़का को मार कर फिर उनको सब देखता हूं, ऐसा करते हैं ना महाराज, इतना नहीं, अब जब गेट में अंदर प्रवेश किए ना तो फिर ना ऐसे तो बड़े भव्य पूजा उजा सभी का सम्मान लेते कर आ रहे थे ना, फिर क्या हुआ ना महाराज, आपके जो मुख्य रजक रंगकार था ना जो गोष्ठी, हाँ तो क्या हुआ, मेरे ड्रेस लाकर, हाँ महाराज आपका ड्रेस, बढ़िया सा ड्रेस धो करके रंग करके रत्न आदि जड़ा करके लेकर आ रहा था वो, न तो फिर ड्रेस लाया नहीं, क्या मैं कल पहनूंगा उसको ना महाराज। उनको तो बीच बाजार में रास्ता पर मार दिया है, मार दिया उसको, केवल मारे नहीं आपके वस्त्र को भी लूट पाट ले गए, लूट करके सारे कपड़ा लूट लिए, अरे दोनों लड़के मेरे सारे कपड़ा भी लूट लिए, उसको मार दिए और न और आगे बढ़े, और काल के लिए आपके जो कपड़ा पहनना था जो सिलाई में दिए थे नया वस्त्र ना, मैं तो सेवक भेजा उनको लाने के लिए कपड़ा, आज रात को लेकर आएगा, आज की डेट था, डिलीवरी डेट था आज। ओ दूत वापस आया, बोलता महाराज मैं तो गया था उसका दुकान में, उनकी दुकान तो पहचान ही नहीं आ रहा था, पता नहीं ये तो सोना बन गया, उनका दुकान सोने का ही बना हुआ है, सोना का बन गया, तो ड्रेस लाना नहीं, ड्रेस क्या लाऊं, वो तो दिखाई नहीं, वो है कि नहीं, फिर कोई नहीं था ना, एक बैठा था, एक युवक बैठा था, बूढ़ा नहीं था, एक तरुण लड़का बैठा था और राम श्याम की जय जयकार कर रहा था। अच्छा ऐसे, दूसरे बोले नहीं वो तरुण वही नहीं, वो बूढ़ा ही तरुण बन गया था, उनको मन दाए ये दोनों लड़के क्या जादूगर बन गए क्या, बूढ़े को जवान कर देते हैं। हाँ केवल इतना नहीं, जिन सुदामा मालाकार को आपने कई बार खबर भेजा कि आपके श्रृंगार की माला दे, आपको पहनने के लिए माला देने के लिए, वो बार बार मना करता था, नहीं नहीं मेरे हाथ कंपता है, मैं माला नहीं बनाना छोड़ दिया और नहीं करता हूँ, आप किसी प्रकार बहाना बना रहा था, और काल इसी माला के घर, मालाकार के घर में गई, वो तो फूलों में सजा दिया उनको। अच्छा उन्होंने अभी माला बना रहे, बना रहा है क्या, कितने माला बनाया, अच्छा मुझे दे नहीं रहा था, मैं उनको सब दिया ना, और दिया क्या, वो तो बूढ़ा हो चुका था, उनको भी जवान कर दिए, वो इतने संपत्ति दिए उनको पीढ़ी तक खाएगा, अच्छा ऐसे कर दिए, इतने नहीं महाराज, आगे गए ना, हाँ आज शाम हो गया, मरे वो त्रिवक्रा कहाँ गया, मुझे अंगराग भी नहीं लगाया, अपना राजा को भूल गया क्या, ना महाराज आपको क्या लगाएगा, आपके लिए पिसी हुई सारे मसाला तो सब उनमें लगा दिया, है मेरे लिए बनाए हुई रंगराग सब, हाँ उनको सब लगा दिया, अरे उसको पकड़ना, आप पकड़ेंगे क्या, वो कुबड़ा बूढ़ी थोड़ी हो ना फिर, अरे वो तो स्वर्ग की अप्सरा बन गई है, ऐसे कर देना, हाँ थोड़ी भी हाथ लगा करके उनको तो अप्सरा बना दिए, अच्छा लगते तो बड़े चमत्कार करते हैं, ये सब सुन करके कंस जल भून जाता था, उनके बड़ाई ये सब उनके पराक्रम सुन करके, अब बोला कि अब क्या होगा, धनुष टूट गया, उनको चिंता आ रहा था, परशुराम ने जब ये धनुष उनको दिए थे उसी दिन उनको सतर्क कर दिए थे कि कंस जिस दिन धनुष टूटेगा समझो तेरा काल आ गया, भगवान परशुराम जो बोले थे, आचार्य सत्यक जी ने परसों ही जब पूजा के मंगल पाठ किए, आवाहन किए, तभी ने मुझे बोले थे, बोले महाराज बड़े सतर्क रहना चाहिए, किसी प्रकार से अगर धनुष टूट गया तो यजमान का महा अविनाश निश्चित है, धनुष तो टूट गया, नहीं धनुष टूटा नहीं, तोड़ दिया गया, तोड़े बदमाश ने, वासुदेव के दोनों लड़के तोड़ दिए उसको, टूटा थोड़ी, तोड़ दिए धनुष, अब क्या करें, अब धनुर्यज्ञ का तो प्रोग्राम ही कैंसिल, धनु है नहीं तो यज्ञ क्या करेंगे, यज्ञ धनु तुरंत क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करें, महेश्वर यज्ञ भी तो होगा नहीं, एक दूत भेजा जाओ आचार्य सत्यक जी को बुला के लाओ, सत्यक बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, ऐसे जदुकुल के पुरोहित थे गर्गाचार्य, पीढ़ी से गर्ग जी उनके आचार्य थे, लेकिन जब से कंस युवराज बना, भी राजा ही नहीं बना था, युवराज जब से बना तभी से गर्ग ने अपना काम छोड़ दिए, बोले मैं आपका आचार्य उपन नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि कंस उनको बाध्य कर रहा था हिंसात्मक क्रिया कर्म जो याज्ञा आदि करने के लिए, वो इसमें भाग लेने ना चाहते थे, ये सात्विक प्रिय आदमी थे, व्यक्ति थे, और कंस वो भी चाहता था कि उनको इमीडिएट फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, सिद्धि चाहिए, वो लेट करने से काम नहीं चलेगा, तो गर्गाचार्य हाथ जोड़ के क्षमा कर चल पड़े, तो कंस बोला ठीक है अब जाओ, हमारी जरूरत नहीं आप जैसे पुरोहित, वो अपने हिसाब से नया पुरोहित नियुक्त किया था अपने कुल के लिए सत्यक जी को, सत्यक जी शक्त थे, शक्ति उपासक थे, और आगम में बड़े विशारद थे, आगम निगम में ज्योतिष में अच्छा ज्ञान था, बड़े सिद्ध पुरुष भी थे वो मथुरा में, वो बहुत लोगों को सम्मान भी करते थे, और कंस का जावतीय यज्ञ आदि क्रियाकर्म भी वो करते थे, उनको पसंद था ऐसे शक्त यज्ञ आदि करने में, बलि आदि देने में, और इतना नहीं उनके यजमान के प्रति बड़े प्रेम भी था, उनका सम्मान भी था कंस महाराज के प्रति, वो उनको खूब दक्षिणा भी देता था, खुश थे वो, उन्होंने उनके लिए ही ये महेश्वर यज्ञ धनुर्यज्ञ के लिए व्यवस्था किया था, अब जो धनुष टूट गया अब दूसरे कार्यक्रम क्या करे, बुला के लाओ आचार्य जी को, दूत गए आचार्य जी के घर, देखा बिल्कुल कबाट खुला है, अंदर जाके देखा कोई नहीं, सब घूम घाम कर रहा है कोई नहीं, सब सामान पत्र ऐसे पड़ा हुआ है कोई आदमी नहीं, अड़ोस पड़ोस से पता किया, बोले पंडित जी कहाँ गए भाई, ना पंडित और पंडितानी दोनों जब कल शाम को बड़ा शब्द हुआ ना धनुष तोड़ने का, घर से निकले, आपने बुजड़ी बांधे, जो हाथ में आया सो निकले, बोले हम मथुरा छोड़कर जा रहे हैं। वो तो चले गए मथुरा छोड़कर, रहे नहीं इधर। ये संवाद जिसे दूत ने बताया तो कंस को मानो लगा कि पूरे जैसे धरती घूम रहा है, जिसे कुम्हार के चक्के के ऊपर कोई खड़े रहने से पूरे धरती घूमते जैसे दिखाई पड़ता है, उनको ऐसे दिखाई पड़ा। उनका पैर से नीचे पृथ्वी जैसे खिसक गया, ऐसे लगा उसको। बड़े चिंता में पड़ गया, दूत को बोला चले जाओ, मुझे एकांत चाहिए। एकांत में बैठ करके सोचने लगा अब क्या किया जाए। इस भीरु पुरोहित भी भाग गया, सारे सैनिक सेनापति लगाए तो मर गए, अब असुर सेनानायक तो सब मर चुके हैं पहले, धनुष भी टूट गया, सारे नगरवासी मेरे तरफ नहीं है अभी, सब उन दोनों लड़कों की पूजा करने लगे, उनको भगवान बोलने लगे, छोटे बेटा को, लड़के को भी हैं। अब तो केवल क्रोध ही कर सकता है। तो उस दिन रात्रि भोजन नहीं किया उन्होंने, बड़े चिंता में पड़ गया। उनके पत्नियों ने थाली बनाकर लाए थे, जो डिनर उनका लाए थे, गाली देकर भाग दिया, नहीं नहीं खाऊंगा आज, जो मर्जी आपके महाराज। अंधार हो चुका था, इधर उधर घूम रहा था, अपने बेडरूम में चला गया। सेवक आ करके बत्ती जला दिए, तभी जमाने में इलेक्ट्रिक लाइट तो था नहीं, दीपशिखा होता था, दीपशिखा जला दिए, जला करके चल पड़े, चल दिए। तो नींद नहीं आ रहा था, चल रहा था अपने भवन में, लाइट जल रहा था, अंधकार में चल रहा था, हठात उसका नजर पड़ा उनके छाया के ऊपर। लाइट में उनका छाया दिख रहा है, उन्होंने छाया में देखा इतने बड़े बड़े से होल है पूरा शरीर में उनका। हैं ये क्या, चिल्लाने लगा, आंख बंद कर दिया, ये क्या देख रहा हूं मैंने, अरे शायद गलती देखा होगा, ठीक से देखो, आंख खोलकर ठीक से देखा, छाया तो ठीक है, अभी छाया के ऊपर धड़ से सर नहीं दिख रहा है। हैं ये कैसे, हाथ लगाया सर में, है तो सही, यहां कैसे नहीं है। उह चला गया बाहर, बोला घर में नहीं रहूंगा, बाहर चला गया। बाहर जाकर के बगीचा में घूमने लगा, रात हो चुका है, बगीचा में देखा जो पेड़ पौधे है सारे गोल्डन कलर के दिखाई पड़ते हैं, ऐसे क्यों, जाके गौर से देखा कि पेड़ से आग लगा है। अरे सारे बगीचे के पेड़ में आग लग गया, ऐसे कैसे लगा, हाथ लगाया, कोई ताप तो नहीं है, गर्मी तो नहीं है, आग मुझे दिखता है, इसे क्या है, मेरा आँख खराब हो गया ना क्या। घूम रहा था, रात को ओस गिरा था, वो पूरे बगीचा गिला हो गया था, खाली पैर में घूम रहा था, पैर गिला हो रहा था, वापस आ गया, आया बारंडा में चला, देखता कि पैर की छाप ही नहीं दिखता, गिला पैर था, पद छाप दिखना पड़े, वो भी नहीं दिखता। बोले सो क्या हो रहा है, बेचैन हो गया, घर के अंदर आ गया। फिर घर के अंदर आया, अभी डर रहा था, बोले कुछ नहीं देखूंगा, जब इसको नहीं देखूंगा, मन में होता ना, मन होता थोड़ा सा देख लूं, थोड़ा सा देख लूं, बाकी बाद में नहीं देखूंगा। तो थोड़ा सा धीरे से अपना छाया को नजर किया कि अब कैसा दिखता है, जैसे नजर किया देखा कि उनका दो सर दिखाई पड़ता है। बोले ही दो कैसे हो गया, फिर हाथ लगाया टटोला उसको, बोला नहीं तो है एक ही, बोला ओ दिस इज टू मच, अब सो जाना चाहिए, अब घूमूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। सो गया, बोला सो जाना, इसे थोड़ा शांति मिलेगा, आंख बंद करके सो गया बत्ती बुझा करके। जैसे सोया नींद थोड़ी आता, स्वप्न ही आया, ऐसे भयानक स्वप्न आया, उनको लगा कि वो पूरा उलग्न है, पूरे शरीर में तेल लगाया हुआ है, मस्तक मुंडन किया हुआ है, और एक गाड़ी में बैठा है, गधे के गाड़ी में, गधे खींच रहे हैं, वो जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, आपने शरीर में हाथ लगाओ तो लगता था बिल्कुल तेल में जड़ जड़ है, बाल भी नहीं है, वो गधा के गाड़ी में खींच कर जा रहा है दक्षिण की ओर, चिल्लाया उठ पड़ा, ये क्या हो रहा है। बत्ती लगाया, देखा नहीं आपने बेड में सो रहा है ठीक ठाक है, पसीना उतर गया ठंडी की समय थे रात में, फिर भी सोचा इसे क्या मैं देख रहा हूं। तो फिर जबरदस्ती सोने के लिए प्रयास किया, बोला सो जाऊंगा, ऐसे कहावत है जो अभी स्वप्न आया स्वप्न के बाद फिर नींद हो जाएगा तो पहले देखा हुआ स्वप्न सब बेकार हो जाएगा, बोले उससे बेकार कर दूंगा। जबरदस्ती नींद में सोने के लिए प्रयास किया बत्ती बुझा करके, नींद तो नहीं हो रहा, तो दोबारा स्वप्न आया, भूत प्रेत पिशाच आकर उसको आलिंगन कर रहे हैं। अरे तलवार खींचा घुमाया, कौन आकर मुझे आलिंगन कर रहा है? तो उठ पड़ा, उठ करके बैठा, बोला क्या करूं, ना सो पा रहा हूं ना बैठ पा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। बोला नहीं, इस बार सोने के लिए प्रयास कर रहा हूं। फिर सोने के प्रयास किया, आंख बंद किया, देखा कि आसमान से चांदनी गिरा उनके ऊपर, धमाक से गिर करके 10 टुकड़ा होकर टूट गया। अरे चंद्रमा गिर पड़ा है तो छाप दिखाई पड़ता मुझे, ये कैसे हुआ? देखते देखते देखा कि सूरज भी गिरा आकाश से। उह बहुत चिंता में पड़ गया, सो भी नहीं सकता हूं ना, तो निकल करके बाहर चला गया बारंडा में। बोला अभी बगीचा में नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, बारंडा में बैठूंगा। बारंडा में चला गया, लेकिन थोड़ी वहां तो पूरे रात में उसके भवन के ऊपर, बारंडा के ऊपर एक उल्लू आकर बैठा था, उल्लू समझते ना, और बैठ करके बड़े कर्कश स्वर से उन्हीं का नाम ले लेकर आवाज कर रहा था, फुकार रहा था। उह ढूंढने लगा कहां बैठा है, इतने तेजी आवाज से बोल रहा है, रात है सब निशब्द है, केवल उनका आवाज। ढूंढ ढूंढने उनको भगाया, उसको भगाया कहां, पूरे रास्ता में चारों तरफ उसके दीवार के चारों तरफ कुत्ता के झुंड एक साथ मिलकर के रो रहे हैं, उनको कहां जाकर ढूंढेगा। परेशान हो गया, सारा रात अस्त्र लेकर के इधर से उधर इधर से उधर भागते रहा, बिल्कुल सो नहीं पाया चिंता में। अभी रात बाकी था, बैठ करके बुलाना, अपना ऑफिस में चला गया, ऑफिस में जाके बैठा करके पूरे सज्ज होकर बैठा, बोला अब तो रात जैसे गया, कल सुबह का प्लानिंग करता हूँ, और प्लानिंग में व्यस्त हो गया, बिजी रहने से फिर ये सब नहीं होगा, मैं खाली रहता हूँ, खाली मन शैतान का घर होता है, तो शैतान परेशान करते हैं, मैं बिजी रहना पड़ेगा। अरे कल इतने बड़े प्रोग्राम है, मैं अभी सोता हूँ क्या, सोना नहीं चाहिए, नाइट ड्यूटी करने चला गया। अब जा करके ऑफिस में बैठा, आप प्लानिंग करने लगा, आप काल को किया जाए, पुरोहित भी नहीं है सैनिक भी नहीं है, तो अभी सुबह ही नहीं हुआ था, बाकी था वो दो चार घड़ी सुबह होने में, तब भी से चिल्लाया प्रहरी को, वो बेचारे सोए थे, उठ करके भागे आए, बोले जाओ अभी कहाँ, सारे मंत्रियों को बुला के लाओ, पीठ पैठी असिलोम उनका जो मंत्री थे सब, सबको पकड़ कर बुला के लाया। महाराज इतनी सुबह सुबह, अरे इमरजेंसी मीटिंग, वो भी सोचे थे कि इमरजेंसी होना चाहिए, जिस सिचुएशन अभी है बहुत घातक परिस्थिति है, तो सुबह होने से पहले मीटिंग चालू होगा ब्रह्म मुहूर्त में। मीटिंग बैठा, क्या है ना, मुझे और समय को अपेक्षा नहीं करना है, ये दोनों लड़के मथुरा में है, उदम मचा रखे हैं, मथुरावासी तो उनको भगवान घोषणा कर चुके हैं, जादूगर बन चुके हैं, सब चमत्कार कर रहे हैं, उनको जितने जल्दी समाप्त करना चाहिए। महाराज आप आज्ञा करें, हम तो आपके साथ हैं, बस जल्दी सेवकों को बुलाओ, रंगशाला को सजा दिया जाए, धनुशाला को जाने दो, अब स्टेडियम मैच करना है। धनुर्यज्ञ नहीं हो तो क्या हो गया, हमारा इन्विटेशन कार्ड में दो इवेंट था ना, पहले धनुर्यज्ञ था, बाद में मल्ल युद्ध था, अब वो एक कैंसिल हो गया, चलो ठीक है दूसरा तो होगा, और दूसरे को जल्दी तैयार करो, जाकर सेवक बुलाओ, सब रंगशाला सजावट करें, और बिल्कुल साफ सुफ करके फूलों की माला तोरण सब लगा दें, और जहाँ तहाँ सुगंधी धूप लगा दें, इतर छिड़कवा दें, सब जाली फाली टंगा कर फिटफाट करें, सारे मंच तैयार करें, और सारे घोषणा कर दिया जाए, सुबह सुबह सारे जगह में घोषणा कर दिया जाए, बहुत शीघ्र ही सुबह सुबह से मल्लभूमि में सबको पधारना होगा, मल्ल युद्ध शुरू होगा, मल्ल स्टेडियम में सबको आना होगा, ऐसे निमंत्रण था, 10 बजे आने के लिए बोलो बिफोर टाइम होगा, सब 8 बजे आने के लिए बोलो, इमीडिएट गुप्तचर भेजा जाए, सब कॉलोनी में इधर उधर सारे सबको दौड़ाया उठा करके, और जो उनके मोटे मोटे सब उनके सैनिक थे, सेनापति थे, वो बेचारे सुबह सुबह तो इतने जल्दी कभी उठते नहीं, कभी नहीं उठे थे, इस सुबह 8 बजे उठते ही थे, और महाराज इतने जल्दी बुलाते हैं, बेचारे नाहे नहीं, ब्रश भी नहीं किए, सब कपड़ा वपड़ा पहन करके आ गए, यूनिफॉर्म पहन करके बिना नहाए धोए आ गए सब, उनको नहाना तो कोई ज़रूरत नहीं होता, आ गए, आ करके फटाफट बोले चलो सबको ले करके, उनको बुलाया महामात्र को, बुलाया पिड़का महामात्र को, बोला तैयार रहो अभी सुबह सुबह, उसको सुरा पिलाया ना, हाँ ना, बिल्कुल तैयार करके रखो, और बिल्कुल जितने बताए इस टाइम पर जैसे लोग सब आ जाएंगे मैं उनको ही बुलाऊंगा, सारे ब्रजवासी लोग आ जाएंगे, उनके बाद में मेन गेट पर लेकर के हाथी खड़ा करना। महाराज बिल्कुल, वो सारे सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया, बुलाकर बोला देखो हमारा भवन के आसपास वर स्टेडियम के चारों तरफ कम से कम 200 मीटर दूर तक नो पार्किंग, स्ट्रिक्ट ऑर्डर, कोई पार्किंग नहीं कर सकते, सब दूर दूर तक यहाँ से रहे, सारे खाली रहे, कोई जानता है कि वो हाथी को पागला करा के लाएगा, हाथी देखेगा कोई रथ घोड़ा हाथी कोई पार्किंग किया तो उदम मचाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, उसे आने नहीं देगा, बोला इसलिए स्ट्रिक्टली जो वाहन सब हैं सब दूर दूर रहे, यहाँ कोई नहीं ला सकते, टाइट रोड सिक्योरिटी जो होते हैं है ना, ट्रैफिक कंट्रोल हैवी कर दिया गया, और स्वयं तैयार होने लगा, तैयार होकर के सबको सेवा में लगाया, और बोला सबको बोले यथाशीघ्र आए, तैयार होकर के उनको बुलाया, बोला नहीं अभी केवल हाथी से मेरा संभावना नहीं कि हाथी से वो काम बन जाएगा, उनका दूसरी प्लानिंग सेट करना रहना चाहिए, तो सारे कूट को बुलाया जो उनका इंचार्ज है मल्लों का, बोला बिल्कुल तैयार रहो, बाई चांस हाथी से बचकर निकले ना महाराज, यही बचे तो सही, अगर बचे तो हम तो है ना, हमारे एक एक के लिए कुछ नहीं, हम पांच पांच महामल्ले हो, पूरे मल्लाशाला भरे हुए हैं, सैकड़ों मल्ल हैं, ऐसे ट्रेनिंग देकर रखा हूँ, आप तो देखें विश्वास ना, मैं तो जानता हूँ आप महाबली हैं, तो फिर आप देखना वो बड़े बालक है वो क्या करेंगे, फिर भी सतर्क रहो, मल्लाशाला जाके इंस्पेक्ट करो ठीक ठाक है कि ना, एक अखड़ा भूमि सब, तो उनको ऑर्डर दिया, वाद्य कान को बुलाया, बोला जल्दी से जाओ आप नहाओ धो, मैं नहीं सुनने वाला हूँ, जा करके हर प्रकार का वाद्य लेके मिलिट्री साउंड में बजना चाहिए, युद्ध वाद्य बजना चाहिए, शुरू करो सारे जाकर, थोड़े समय तक मंगल वाद्य बजे उसके बाद युद्ध वाद्य चले हो जाए, और जल्दी से मल्ल युद्ध शुरू करना है, इवेंट शुरू करना है ना, महाराज सब आएंगे ना, खबर भेज दिया सब आना था जल्दी आने के लिए, तो सारे गुप्तचर जाकर सबको खबर दिए, तो लोग आना चालू हो गए, सूर्योदय होते ही स्टेडियम से लोग आना शुरू, क्योंकि पहले से ऑर्डर था पूरे नगरवासी में प्रत्येक लोग को आना पड़ेगा कंपलसरी, जो नहीं आएगा उसको राजदंड मिलेगा, सबको आना पड़ेगा, और घर की सुरक्षा, नगर की सुरक्षा, सिक्योरिटी देखेंगे, आपको कोई चिंता नहीं, सबको आना पड़ेगा इवेंट में, सब आ रहे हैं, जो बड़े बड़े इन्वाइटेड गेस्ट अलग अलग देश प्रदेश के राजा सब कंस के अधीन थे, वो सम्राट था उनके अधीन में कई और राजा थे, वो नरपति सब आए, उनके जो पार्टी के लोग बदमाश राजा सब थे दुष्ट राजा हैं वो सब आए, और उस क्षेत्र में जितने बड़े बड़े सामंत साहूकार मंडलेश्वर जो सब बड़े बड़े नगर मुख्य आदि ओविल सब आए, सब भेंट लेकर के आते थे, महाराज के वार्षिक उत्सव है, बहुत बड़ा भारी उत्सव है, राजा को भेंट देना हो तो चीर प्रथा है, बड़े उत्सव में महाराज को भेंट दिया जाता है, अब सरे ला करके भेंट आ रहे हैं, सभी बड़े बड़े लोग जो हैं जिनका VIP पास था वो लोग सब आ रहे हैं, उनको ट्रैफिक अलाउ कर देता था गेट पर जाएं, वहीं अनलोड करके उतर जाएं, फिर गाड़ी ला करके वो यहाँ पार्किंग करे, रोड में कहीं नहीं, पार्किंग लॉट बहुत दूर में ही, वहाँ जाकर पार्किंग करे, सब जो बड़े बड़े मुख्य राजा और सेठ साहूकार मंडलेश्वर ये लोग आते थे, उनको वाहन वही उतार कर फिर वापस चला जाता था, कोई घोड़े में आता था, कोई हाथी में आता था, कोई रथ में आता था, बड़े बड़े संभार भेंट वस्तु सब लेकर आते थे, टोकरी, उनके सेवक लोग सब वहीं उतर करके फिर उन गाड़ी चला जाता था। देखते देखते पूरे नगरवासी सब आने लगे। स्टेडियम के अंदर ये व्यवस्था था, बिल्कुल अलग अलग गैलरी सबका बना हुआ था वर्ण के हिसाब से। यहाँ स्त्रियाँ बैठेगी, यहाँ बालिकाएँ बैठेगी, यहाँ वैश्य बैठेंगी, यहाँ शूद्र बैठेगी, यहाँ क्षत्रिय बैठेंगे, यहाँ राजन्य वर्ग बैठेंगे, यहाँ सब मंत्रियाँ बैठेंगे, और सबका अलग अलग व्यवस्था था, सबका अलग अलग मंच बनाया गया था। जो राजा का मंच था वो तो 10 हाथ ऊँचा था, सबसे विशाल ऊँचा मंच था, बहुत सजावट था उसमें। उसके बाजू में एक स्पेशल गेट था महाराज कंस के एंट्री करने का, एंट्री गेट भी सब अलग अलग था, और दूसरा एंट्री गेट था मल्ल के आने के लिए, और तीसरा एंट्री गेट था राजपुरुष जिसमें आए, और एक गेट था जिसमें राजा के जो राजपुर के राजा के अपने परिवार के लोग, अपने रानियां, अपने भाई लोग आएंगे, उन लोग के लिए एक प्राइवेट गेट था, और बाकी महाद्वार था 3 पूरा स्टेडियम में, जिसमें सारे पब्लिक एंट्री करेंगे। सिक्योरिटी बड़े टाइट था, सबका आईडी चेकिंग होता था, हाँ सारे बैग बैगेज लगे चेकिंग करके छोड़ते थे, कोई कुछ बदमाशी करे कुछ लेकर आए अस्त्र शस्त्र शायद, सारे स्ट्रिक्ट चेकिंग करके छोड़ते थे। जो भी अंदर आता था, अंदर सशस्त्र सिपाही थे, सबको निर्देश करते थे आप इधर जाकर बैठो, आप इधर बैठो, आप इधर बैठो। सब नोटिस बोर्ड लगा गया था नियमावली, यहाँ चुप बैठा है, सब देखेंगे केवल, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, शांत रहेंगे, टॉयलेट बाथरूम सब है, किसी को लगे तो जा सकते हैं, और किसको खाना पीना लगे तो हमारे सेवक हैं, पानी शरबत फल मूल टिफिन सबका व्यवस्था है। और पीछे विशाल रोसघर था, क्योंकि सबके खाने का व्यवस्था था, टाइम पर सब लंच मिलेगा, भारी कुकिंग चल रहा था पीछे, और ऐसे व्यवस्था सब चल रहा था। महाराज कंस पधारे, सभी जब आ रहे हैं स्टेडियम में, काल के घटना तो सबको सुने, कोई देखे 90% तो देखे, जो बाहर से राजा लोग का ये सुने, बाकी तो यहाँ के लोग तो सारे देखे थे। देख करके आज उनका मन में बहुत उथल पुथल चल रहा है कि आज ये भगवान वासुदेव, ये वसुदेव के कुमार आज क्या करेंगे, ये जो इतने प्रकार के भारी योजना उनको बद्ध के लिए बनाया जा रहा है, क्या सच में सफल होगा। सभी लोग अपने चिंतन में और सभी का मन में बड़े प्रकार में उत्सुकता और प्रतिक्रिया चल रहा है, क्योंकि अभी तो प्राय लोगों का मन में उनके प्रति पूज्य भाव नहीं, भगवत भाव है, ये साक्षात भगवान है। सब याद करते हैं उनका, जो 10 साल वृंदावन में थे, क्या क्या अद्भुत कर्म किए, उसको याद करके सब मन में सोच करके आके बैठ रहे हैं अपने अपने स्थान में। बोलेंगे क्या? आप उसको साफ कर, जल्दी करो, टाइम लगे।
जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। गाइए जय जय। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम।
जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम।
राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
मधु गए तब दो नदियों को मच्छर रूप से मारा। वेदों का उद्धार किया मगन हुआ जग सारा। सागर मंथन में प्रभु ने कश्यप रूप बनाया। अपने पीठ पर पद करके मंदराचल पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी के रक्षा के लिए बड़ा रूप में आया। हिरण्याक्ष को मार के धरती जल के ऊपर लाई। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
भक्त प्रहलाद की रक्षा तो प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया। भक्त प्रहलाद की रक्षा तो प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया। अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि तीन पग मांग के बलि से वामन रूप विराज किया। बलि के सिर पर पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का प्रसिद्ध कहाई। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम
दो अक्षर का प्यारा नाम।
त्रेता युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया। त्रेता युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया। जन के सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से ब्याह किया। जन के सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से ब्याह किया। जब द्वापर युग आए तो अवतार कृष्ण का लेंगे प्रभु। संभार कंस के करके तभी जग का संताप हरेंगे प्रभु। जब घोर कली जब घर घर हिंसा फैलेंगे प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। मानव को प्रेम हिंसा का प्रभु पावन पाथ पढ़ाएंगे। जब घोर कली अवतार प्रभु का जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का।
के जपने से बन जाते सब बिगड़े का। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा।
रंगशाला के स्टेडियम में दर्शक से लगभग भरते जा रहा है और अभी महाराज कंस भी पधार रहे हैं। बंदीजनों आकर के घोषणा किए, जदुकुल नायक जदुकुल गौरव महाप्रतापी विराधिवर महाराज भोजपति कंस पधार रहे हैं, तो सारे खड़े हो गए दर्शक वृंद। महाराज पधारे, सभी खड़े होकर देख रहे थे ससम्मान। महाराज का नजर सभी के ऊपर घूम रहा था, सब देख रहे हैं कि कंस महाराज ने आज बिल्कुल अद्भुत पोशाक पहने, आपाद मस्तक बिल्कुल स्वच्छ सफेद, दूध जैसे सफेद वर्ण के पोशाक, पूरा सफेद तिलक, सफेद मुकुट, बिल्कुल सफेद वेशभूषा है। सोच रहे आज महाराज पूर्ण सफेद बिल्कुल, क्योंकि आज उनका हृदय में बहुत काले विचार था, उसको ढांकने के लिए सफेद वस्त्र में आवृत करना चाह रहा था। बोला लेकिन लोग सब पब्लिक के सामने तो ठीक ठाक रहूंगा, भद्र लोग बनूं, अंदर तो काले अंगार ढांक के रखा हूं सारे। पूरा विचार मन में चल रहा था, दोनों लड़का को मारूंगा, सबको मारूंगा, सबको मरवा दूंगा आज, इसलिए बिल्कुल सफेद वस्त्र से आपाद मस्त्र ढंग कर रहा था, चक चक सफेद बिल्कुल चांदी से चमकते। आग्र सिंहासन पर बैठा, एक नजर घुमाया, बुलाया मंत्र की, अभी तक ये नंद ब्रज के लोग ब्रजवासी क्यों नहीं आए? महाराज उनको खबर नहीं, तुरंत दूध दूध भेजो, बोलो कि बच्चे अगर लेट होते हैं आने में उनको बाद में आने देना, पहले उन लोग आओ, महाराज अपेक्षा कर रहे हैं, बोला उनको। फिर देखा, अरे दो रथ भेजो विथ पुलिस कस्टडी, एक रथ में वसुदेव देवकी को जेल में लाओ, यही थे बंधे हुए पुलिस कस्टडी के साथ, दूसरे रथ में मेरे पिताश्री की लेकर आओ अग्रसेन महाराज को, उनके लिए दो स्पेशल सीट अरेंजमेंट किया गया था मंच में, बिल्कुल राजमंच के पास में। तो थोड़ी देर में दो मिलिट्री वैन आया, जिसमें एक में वही भुवन वैद्य दंपति थे, वसुदेव देवकी हैंडकप था, बंधे हुए थे हाथ पड़ी कड़ी, दोनों साइड में प्रहरी थे, पुलिस कस्टडी में थे, ला करके उनको बैठाया गया। और दूसरे रथ से उनके पिताश्री निकले, उनको भी ला करके मंच में एक विशेष आसन बैठा गया, उनके साथ ही पुलिस कस्टडी, दो साइड में दो पुलिस खड़े थे। मंदिर उग्रसेन महाराज एक तो उसी मथुरा राज्य के भूतपूर्व नरेश, उन्हीं के पुत्र श्री, उनके ज्येष्ठ पुत्र आज तुले हुआ है कि पिताजी को ला करके सर्वसाधारण पब्लिक के सामने प्रताड़ित, घोर अपमानित करना है मुझे। अपमानित तो मार देना चाहता था सबका सामने। अब पिताश्री क्या करें, पुत्र ही अपना आकर के बैठे सबके सामने, हाथ कड़ी बेड़ी पहने पुलिस कस्टडी में बैठे, वही महाराज थे इतने दिन तक। अब बोला कि यथाशीघ्र उनको बुला लाए, तो फिर दूत आकर पहुंचा नगर के आम्र उद्यान में। नंद बाबा वगैरह सुबह सुबह उठे थे, उठ करके अपने अन्निक सब कर लिए थे, लेकिन बच्चे तो कल टायर्ड होकर रात में आए थे, वो थोड़ा लेट में उठे हैं, अभी तैयार नहीं हुए, नाद हुए नहीं। दूत पहुंचा कि महाराज अपेक्षा कर रहे हैं, बड़े जल्दी सजवाज वगैरह। अच्छा, अरे रे रे रे, अरे बाल को तैरना है। महाराज बोले कि बालक बाद में आ सकते हो। बलराम बोले बाबा आप जाइए ना, हम तो रास्ता देख चुके हैं, काली गए थे, सब देख लिया था, वो थोड़ा बहुत आज देख लेंगे, क्या बात है, आप जाइए ना, आपको पता है रंगसल? हाँ पता है, कल गए थे ना यहाँ तक, वही तो बजा बज रहा है, और क्या सजा हुआ है, हम पता है, हमको चले जाएंगे, आप जाइए, हम आराम से नहा धो करके अपने हिसाब से आएंगे। तो नंद बाबा ने सारे गोप को तैयार किए, पूरे बैलगाड़ी में छकड़े में जो जो सब भेंट लाए थे, दूध दही मक्खन घी आदि सब लोड किए, लोड करके चल पड़े। और जा करके उनकी गाड़ी को आने दिया गया मैं मुख्य द्वार तक, क्योंकि सारे भेंट सामग्री उतारना था। सारे भेंट सामग्री लेकर गए और यहाँ महाराज जहाँ बैठे थे राजमंच में, प्राय सभी प्रजा, सभी नगर अध्यक्ष, सारे मंडलेश्वर और जितने नरपति और जो भी से बड़े बड़े आए थे, सभी ने कुछ ना कुछ भेंट सामग्री लेकर आए थे। सभी बारी बारी में जाते हैं, जाकर राजकीय सम्मान के साथ उनको सम्मान करते हैं और अपना भेंट सामग्री जमा दे करके फिर अभिवादन करके वापस आते हैं। कंस महाराज किसी को और देखते नहीं, केवल इशारा कर देते हैं भेंट सामग्री जो पीछे किसी ने भेज दिया जाए जिसका सामग्री है। और इसी हिसाब से गोप वृंदवी जो ब्रजवासी थे वो भी जाके पहुंचे, उनको निर्दिष्ट उनका मंच था, गैलरी जहाँ उनका बैठन था वहाँ भेज दिए गए और उनका सामग्री सब लेकर दिए। बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट है तो उनको भी इशारा करते सब किचन में चले जाए, यथेष्ट आज फिस्ट में काम आएगा। और सब जाकर के भेंट सामग्री देकर अभिवादन, कौन से किसी को नहीं देख रहा था। इतने में थोड़ी देर में हम लोग आठ लगभग बज चुका है, बिल्कुल तैयार हो करके और पंच महामल्ल आए सबके सामने, आकर के अभिवादन किए। उनके सामने उनका इंस्ट्रक्टर कूट आ रहा था, वो कूट आ रहा था, जब वो अभिवादन किए राजा को तो कंस ने उनको देखा, देख करके स्मित हास्य किया, तो उन्होंने भी देखे कि राजा हमको देख करके हंस रहे, बाकी किसी को देख नहीं रहे थे, तो उन्होंने बड़े हर्षित अनुभव किए, बहुत खुश हो गए। खुश हो करके अब बिल्कुल भूल गए कि राजा हमको पसंद कर रहे, बाकी किसी के बेटे स्वीकार कर नहीं रहे थे। अब आ करके सबके सामने अपने वस्त्र उतारे, जो कपड़े पहनते उतारे, सारे दर्शकों का दृष्टि आकर्षण किया। इतने विशाल काय, पर्वत जैसा उनका शरीर था, प्रस्तर भित्ति के समान बड़े कठोर शरीर था उनका, शरीर का एक एक मांसपेशी अवयव से दिखाई पड़ता था, चक चक करके पर्वतकार शरीर। और आपने निर्वस्त्र होकर के अपने मल्ल वेश को कस करके अब मसल्स दिखा रहे थे, सभी लोग देख रहे थे कितने भीषण काय व्यक्ति वो लोग ने। और फिर वो लोग आगे गए, जा करके बड़े सहर्ष अपने जो मल्ल भूमि है, जो अखाड़ा था, वहाँ पे जा करके उनको प्रणाम किए, पुष्पांजलि अर्पण किए और अपने उतर गए व्यायाम करने के लिए। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे थे। राज आदेश हुआ, मल्ल मारू बजने लगा। मल्ल मारे अंतर ना एक वाद्य के, मल्ल युद्ध के समय एक ध्वनि विशेष प्रकार के वाद्य बजता है, वाद्य बजने लगा। वो ताल के साथ साथ उन्होंने अपना दिखाई एक्टिंग। तो सभी बैठ चुके हैं, तो केवल अपेक्षा है अभी। आप सारे अनाउंस करते सब साइलेंट बैठे हैं, अभी मल्ल युद्ध होने वाला है। अभी कॉम्पिटेंट तो आए नहीं, लेकिन फिर भी ये सब देख रहे हैं। तो इतने में आदेश दिया कि कुबलाई पीर को बुलाया जाए। तो जो महामात्र था हस्तिशाला का, उन्होंने कुबलाई पीर को लेकर के आया मुख्य द्वार पर। कुबलाई पीर हाथी ऐरावत वंश का हाथी था, महागज था। कंस को अपने ससुर जरासंध ने उसको दहेज में दिया था भेंट में। ये महागज का 10,000 हाथियों के बल था। श्वेत हस्त सफेद हाथी था वो, चार दंत था उसका, चार दंत था। इतने प्रकांड का पर्वत का हाथी था, अब कभी बहान नहीं बनता था वो, चिढ़ता था कभी बहान नहीं कहते थे उसको। वो युद्ध हाथी था, युद्ध के काम में था, लेकिन अभी तक कंस कभी काम में नहीं लाया था। जरासंध के हस्तिशाला में जब कुबलाईपीर था, पूरे वर्ष भारत वर्ष में लोग डरते थे, इरी जिसी का हाथ पास में कुबलाईपीर जैसे हाथी है वो आ जाए तो सबको कुचल जाएगा। तो जब कंस को दे दिया तो कंस के साथ युद्ध करे, उनका नाम सुन करके लोग डर जाते, कुबलाईपीर हाथी का नाम सुन करके। इतने महागज था, उनको पालना भी कोई साधारण काम नहीं था, बहुत भारी कठिन था। वो जब हाथी चलता था तो उनका चार पैर के पास में 8 सशस्त्र प्रहरी रहते थे उनका पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर पांव के पीछे 2-2 सोल्जर, 8 नीचे चलते थे, एक महामहंत ऊपर बैठता था ये हाथी को। और आज तो उसको लेकर जब आए, खूब सुरापान किया था उन्होंने, पूरा आंख उनका लाल लाल दिखाई पड़ता था, गंडस्थल से मद चू रहा था। और उसका ऊपर जो महामात्र जो उसका कंट्रोलर हस्ती बैठा था वो भी खूब सुरापान किया था, वो भी आंख उनका लाल लाल है जम करके। अब 8 सोल्जर पीछे पैर के पीछे चल रहे हैं, वो चल करके आके मेन गेट पर खड़े हो गए, बिल्कुल टलमल कर हाथी झूल रहा है, खूब सुरा पिया है बैठा है। इतने में मथुरा नगर के बाहर में जो बच्चे थे वो लोग तैयार हो, बोले अरे बाजा सुनाई पड़ रहा है, कम से कम चलो देखेंगे जल्दी कैसे लड़ाई हो रहा है देखेंगे। बच्चों का मन में बड़ा उत्साह आया तो फटाफट से तैयार हो गए। उनको तैयार होने टाइम थोड़ी लगता, कौन सा उनका भारी ड्रेस है ना क्या है, कोई चप्पल जूता पहनना नहीं कुछ नहीं, बस पटुका कछनी मारे चल दिए, उनका क्या है, एक एक लाठी हाथ में पकड़े चल दिए, कल तो गए थे रास्ता पता है, चल पड़े। और जा करके रंगशाला के मुख्यमंत्री देखे, पूरा रास्ता खाली सुनसान, कोई घोड़े नहीं हाथी नहीं आदमी नहीं, सब आदमी तो अंदर बैठे हैं, कोई आज नगर खाली है, सब स्टेडियम में है, अब केवल वही वही जा रहे हैं, कल इतने देखने वाले थे आज कोई नहीं है। अब जाकर जैसे जल्दी है हमको देखना है, अंदर बाजा बज रहा है, गए तो देखे रास्ते पर महागज खड़ा है द्वार रोक करके। बोले अरे हाथी क्यों खड़ा है, उसको साइड नहीं क्यों करता, हम कैसे जाएंगे। तो श्याम सुंदर ने वहीं से चिल्लाए, ले अम्बस्ट ए हाथी वाला मूर्ख, दिखाई नहीं पड़ता हम लोग आ रहे हैं, हटो यहां से हाथी घटा लो, चिल्ला करके बोले। उनको तो सुन करके वो तो ऐसे मतवाला होता, बड़े गर्वित था, उनको सहन नहीं हुआ, बोला अरे हमारे महाराज मुझे सम्मान करते हैं, महाराज का हस्तिशाला के महामात्र हूं, मैंने महामहंत हूं, मुझे ये ईसा करके बुला रहा है, कोई सम्मान नहीं उसका, ये बच्चे हैं गांव के गवार बच्चे हैं। वो तो गुस्से में आ गया, अड़ कर बैठा मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान डांट कर बोले अरे मूर्ख अंधे दिखाई नहीं पड़े थे, हम आ रहे हैं जल्दी हाथी की साइड करो। बोला अरे गवार लड़के तुम्हारा ये साहस है, मुझे आकर इसे बोल रहे हैं ना, अगर तो हाथी नहीं हटाता है तो हाथी भी मरेगा तुम भी मरेगे, हैं तुम बच्चों का तो खूब बड़बड़ हो रहा रे। अब उनको सहन नहीं हुआ, हाथी के ऊपर बैठा ही था, आपने दो पैर को हाथी के आंख के पास में जो तंत्री है वहां खूब जोर से दबाया, महात्म कैसे दबाते हैं पैर में, जब दबाया तो हाथी झूल पड़ा, झूम करके बिल्कुल चल पड़ा आगे। जैसे चल पड़ा कृष्ण भी आगे बढ़ चुके थे, सारे बच्चे बलराम के सहित सब खड़े होकर देख रहे थे क्या होने जा रहे हैं। कृष्ण आगे बढ़ चुके थे, हथियार आ था आगे बढ़ करके, जैसे आ करके अपने शुंड बढ़ाया, भगवान ने उठा करके उनके शुंड के ऊपर होता ना नासिका, उसी के ऊपर एक थप्पड़ जमा कर लगाया शुंड के ऊपर से। अरे ओ, आपके नाक के ऊपर कोई मुष्टिका घात करे कैसे लगेगा, हाँ सो बिगड़ जाएगा। तो हाथी तो गुस्से में तिलमिला बैठा, बोले ये बच्चा इतने जोर से मेरा नाक पर मारा शुंड पर, अब मार करके अब चले गए उनके पेट के नीचे, विशाल शरीर था। अब शुंड इधर उधर करता है, कभी इधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं, परेशान हो गया। बड़े मुश्किल से उनको पकड़ा, पकड़ करके बाहर ले आया। सारे बच्चे देख करके कंपने लगे, अरे पकड़ लिया क्या करेगा। जैसे सामने पकड़ा, बोला उठा कर पीट दूंगा, उठा रहे तक सुर खिसक गए। अरे वो देखा कि खिसक गया, खाली हो गया, बेकार हो गया, खिसक गया हो तो। फिर पकड़ने की कोशिश किया, इधर उधर भाग रहा है। आप सामने से नहीं गए, पीछे नहीं गए, पीछे घूमकर चले गए, पीछे तरफ चले गए। अब जा करके उसको पूछ को पकड़ लिए, हाथी का पूछ पकड़ लिए। महागज था, पर्वताकार गज। अब जानते हैं हाथी जो विशाल हाथी होते हैं, बैठ के चलते हैं, समतल में अच्छा चलेंगे, जब ये ऊंचाई जगह होता ना कोई ब्रिज के ऊपर बहुत ऐसी चढ़ाई होगा तो उनको भारी पड़ता है चढ़ाई चढ़ के चलने के लिए, सामने से चढ़ के नहीं जा सकते। अब श्याम सुंदर ने जाकर उनके पीछे पूछ पकड़ लिए, पीछे बहुत चढ़ाई था क्योंकि राजप्रसाद था ना, बिल्कुल हाइट पर था, पीछे से खींचे उसको बैक गियर में खींचे। इतने विशाल भारी हाथी वो पीछे पीछे चले, ऐसे ही सामने से आगे चढ़ नहीं सकता, चढ़ाई में ऊंचाई पर पीछे चलना है, पैर कैसे कैसे करके पीछे चले। उसको बड़े उत्पटांग लगने लगा, अब नहीं चले, खड़ा हो गया तो उनको लग रहा था मेरा एकलौती पूछ है। पूरे हाथी के शरीर में सबसे छोटी और दुर्बल अंग होता है उनका पूछ। बोला मेरा एकलौती पूछ हो उखड़ जाएगा, क्या करे। नहीं चाहते हुए चिधाड़ रहा था, बिल्कुल सूंड उठा करके चिल्ला रहा था, लेकिन करे क्या, कोई उपाय नहीं, वो तो खींच रहे बड़े वेग से। अरे पिशाब करते टट्टी करते पीछे बैगर में चलता था, चलता था, चिल्लाते चिल्लाते धीरे धीरे पैर करके चलने लगा। वो खींचते गए, वो चलते गया, परेशान हो गया वो, महावत भी परेशान हो गया, वो भी परेशान हो गया, हाथी छोड़ नहीं रहे। लगभग 100 हाथ पीछे खींच लिए, कितने ऊंचाई तक ले गए, बिल्कुल पीछे पैर उनका ऐसे मुड़ गया, आगे पैर ऐसे ठेस दे देकर दे करके पीछे बढ़ते बढ़ते जा रहे, पीछे उठा चढ़ाई है। इतने परेशान कर दिए कि पूरा उनके जीवन में ऐसा परेशान कभी नहीं हुआ था उसको, कितने लड़ाई कितने क्या किया है, कोई उनको कंसन एक बार उनको सूंड पकड़कर खींचा था जरूर, सामने से खींचा था कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई पूछ पकड़कर पीछे से फिर ऊंचाई में खींचे, ओहो भारी कष्ट है। हाथी का तो आंख से उनको आग निकल रहा था, इतने बिकल होकर के यंत्रणा आवाज कर रहा था, बोल रहा था कौन आ गया है, इतने बड़े शत्रु ये दिखाई नहीं पड़ रहे कि बालक है और पीछे से पूछ पकड़ खींच रहा है, इतने में जाना ही पड़ता बैक गियर में। अब 100 हाथ पीछे गया तो सोच रहा था मर ही जाऊंगा, 100 हाथ के बाद छोड़ दिए। ओह अब इतने गुस्सा में आ गया था, भयंकर गुस्सा में आ चुका था, जैसे छोड़ दिए तुरंत घूमा, घूम करके रक्त चक्षु होकर के उसको देखा, बोला आज मार ही दूंगा उसको। उसके ऊपर जैसे बड़ा भगवान ने पीछे दौड़ा उनका पीछे, सारे ग्वाल बाल तो कांप गए, अब क्या करेगा, हाथी के पैर बड़े लंबा लंबा चलता है, बच्चा कितने जोर से दौड़ेगा, हाथी के सामने कोई ज्यादा स्पीड नहीं किसका चल सकता, इतने बड़े बड़े एक बार में 5-10 फुट खपता है। अब बेग से चला, भगवान दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर आगे जा करके गिर पड़े, जैसे गिर पड़े ग्वाल बालों का तो हार्ट बीट बंद ही हो गया, सब हक्के बक्के देखने लगे, कनू क्या होगा, मुंह से जवाब नहीं निकलता, क्या हो गया, सब त्रस्त देख रहे हैं। हाथी तो बड़े वेग से दौड़कर आ रहे हैं, महान तो उनको अंकुश मार रहा है ऊपर से, उनके मस्तक को छेद कर चला है अंकुश मार मार करके, पहले कभी कोई उनको अंकुश नहीं मारा था उसको कोई, आज तो वो ही परेशान है ऊपर से अंकुश मार रहा है और खुद का भी इतने परेशान है, कोई व्याघ्र में इतने चलाया उसको, बड़े देखा कि वो गिर गया तो बड़े खुश होकर के अब मार दूंगा उसको। ये जोर से हाई स्पीड से आया, चार दांत को उठा करके बड़े शक्ति लगाकर दुम मारा, जैसे आकर के दंत मार रहा था फट से उठकर भाग गए। वो थोड़ी गिरे थे, तो सोए थे इधर जानबूझ कर गए उनको फंसाने के लिए कि हाथी आएगा मुझे अटैक करेगा मैं भाग जाऊंगा वो फंसेगा इधर, इसलिए जानबूझ कर सोए थे। जैसे उठकर भागे वो बच्चे ने ताली बजाए, वो आया पूरी कसर लगा करके दांत मारा, वो पूरा अपने मुंह तक दांत घुस गया धरती के अंदर, हाँ जितने लंबा लंबा उनका दांत था सारे घुस गया धरती के अंदर, चारों को चारों दांत घुस गया। अब देख रहा है कि तो मर गया होगा, है ही नहीं कोई कुछ नहीं, बेकार गया सारे, इतने बड़े मार फल्स हो गया, वो तो भाग गया। ओहो हो, निकालने के लिए बड़ी ताकत लगा, दांत हिल गया उसका, बड़े ऐसे ऐसे करके दांत निकाला। अब तो गुस्सा तो और प्रचुर बढ़ गया, ये बच्चा तो बड़ा मुश्किल कर रहा है, मावत भी परेशानी हो रहा है, ये भी परेशानी हो रहा है। अब देखा कि दूर से खड़े हैं, तब दौड़ा कभी पीछे कभी आगे, अब बेचारा मुड़ रहा है पकड़ रहा है बड़े गुस्सा से पकड़ने के लिए उसको। अब बच्चे लोग भी देखे कि बहुत हो गया खेल, बलराम जी के आंख लाल होने लगा, बोले ये कौनों के साथ बड़ा गड़बड़ कर रहा है, मैं चलूं। अब श्याम सुंदर नहीं चाहते थे कि बड़े भाई को परेशानी उठाना पड़े, दादा को क्यों परेशानी उठा, मैं अकेला हूं तो सही देख लूं। तो खड़े हो गए, दौड़ रहे थे खड़े हो गए, जैसे खड़े हो गए तो हाथी तो पूरी ताकत से जोर लगा के दौड़ के गया सीधा, बोला अभी तो पैर में कुचाल दूंगा, अब मारना दांत नहीं लगाऊंगा, अभी पैर में कुचाल दूंगा। ऐसे पैर उठा करके खूब वेग से दौड़ कर गया, सूंड में पिटूंगा पैर में कुचल दूंगा। जाकर जैसे सूंड पड़ रहा था तो बलराम आने से पहले उन सूंड को पकड़ लिया, एक ही हाथ में, दाएं हाथ में पकड़ लिया, पकड़ करके ऐसे उमेठे उसको, जैसे देखते ना धोबी कभी मोटे वस्त्र को निचोड़ता है, इसे निचोड़े ऐसे ऐसे मोड़ने लगे, बाप जी से मोड़ते पूरा मोड़ने लगे, बेचारा तो फोल्डिंग होने लगा, भीषण आवाज करके गिर करके पड़ा धमाका से, गिर पड़ा साइड में, उसे मोड़ दिए। उन्होंने क्या करेगा, बोले पूछ निकल जाए तो सूंड निकल जाएगा, नाक फाक सब उखड़ जाएगा उसका। ऐसे उमेठे उसको देख करके मुड़े तो बेचारा चित्कार करके गिर पड़ा, गिर पड़ा तो इतने पर्वताकार हाथी, वो महत तो अपोजिट साइड में गिर के भाग गया था, नहीं तो वो भी पीस जाता, वो भी गिर पड़ा था हाथी पड़ा। तो बलराम तब तक पहुंच चुके थे, बलराम जाकर सबसे पहले उनके सर के ऊपर पैर जमा दिए, जमा करके उसे दांत को पकड़ कर हिला करके खींच ली, निकाल लिए दांत। जैसे दाऊ ने एक दांत निकाल लिए तो श्याम ने भी एक दांत निकाले, दो दांत छोड़ दिए, बाकी दो दांत निकाले और दो दांत के जगह से होस पाइप जैसा ब्लड निकला, और निकाल करके वही दो हाथियां पिटने लगे, और क्या जो था उसको हड्डी पसली साफ साफ हो गया, वही छट 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 होकर मर गया वहां हाथी, दोनों दांत गजदंत से उनको पीट पीट कर मारे उसको। अब बेचारे जो महंत था जो इतने बड़े टेम्पर में उसको गाली दे रहा था, उसको बुद्धि अगर सही होता तो भाग गया होता, सही इतने बड़े हाथी की मार दिए, तुम कौन है भाई, लेकिन लगा ये बच्चे हैं, हाथी मर गया उसका परेशानी था, बूढ़ा हो गया शायद, मैं थोड़ी छोड़ूंगा। वो तो जो अंकुश को उठा करके आया मारने के लिए, वो उनका सर चार सोल्जर और थे, आठ सोल्जर थे, सभी दौड़ के आए, बेचारे क्या क्या सबको भी गति मिलना था। अब जैसे दौड़ कर आए, अब बलराम जी तो हाथ में गजदंत तो पकड़े ही थे, एक एक मारे, एक एक सफिशियंट सबके लिए, और क्या, वहीं पे जैसे वहीं पे समा गए, कोई कूं का आवाज नहीं कर पाए, वहीं पर ही गिर पड़े। आप जैसे गिर पड़े, सारे बालकों ने ताली बजाए, आकर के अंकमाल दिए, आलिंगन दिए। आप वो गजदंतु को रख दिए थे, बच्चे ने बोले नहीं नहीं उसको पकड़ो, बल अच्छा दिखता है, तो दोनों भाई ने उठा लिए दंत लाठी की तरह, एक कंधे में एक पकड़ा, दूसरे कंधे में वो पकड़े, दोनों भाई कंधे में गजदंत लिए हुए, विशाल गजदंत सोना मढ़ाया था उसमें, सोने की मुट्ठी मढ़ाए हुआ था, मढ़ करके अब तो कोई गेट खाली, अब तो कोई है नहीं, वहां गज मरा, सिक्योरिटी भी मरे, अब तो गेट खाली, गेट में घुसे। जैसे ही महागज का जो चिधाड़ना चित्कार भारी हुआ था बाहर में, पूरे लोग तो नगरवासी स्टेडियम के अंदर थे, कंस का तो पूरी नजर गेट के सामने जाता था, वो देखा कि हाथी चल पड़ा, वो मन में सोच रहा था मर देगा अभी तो, लेकिन अभी देखा नहीं पड़ रहा था गेट के बाहर से क्या हो रहा है। भारी हाथी का आवाज सुनाई पड़ा, बोला था हाँ चल रहा अब तो गल चल। सारे बाकी लोग जो थे विशेष करके ब्रजवासी खड़े हो गए, चित्कार करने लगे क्या हो रहा है, ये पागल हाथी, बड़े हाथी चिधड़ रहा है, हमारे बच्चे आते होंगे अभी, गड़बड़ी होता होगा, क्यों जाकर के सिक्योरिटी उन घटा नहीं लेते हैं, क्यों कर नहीं रहते। कंस ने ऑर्डर दिया, बोला सबको शांति कराओ, साइलेंस प्लीज साइलेंट, बैठ जाओ, कुछ सुना नहीं जाएगा। अरे सब चित्कार कर रहे हैं क्या बात है, हाथी आवाज कर रहा है। थोड़ी देर तो आवाज चला, ज्यादा समय नहीं चला, एक धमाका आवाज हुआ फिर शांत। जैसे हाथी गिर पड़ा आवाज करके, तो कौन सा देख ही रहा था, वो झप करके गिर पड़ा, एक बार हताश होकर के उनका चांदी के मुकुट से जो मेन मणि था वो गिर पड़ा, धमाके से निकल गया उसको, वो हताश सा हो गया। लेकिन क्या होगा, देखा नहीं उसको, डाउट लगा कि सही में हाथी को मार दिया ना क्या, घुबला पड़ी हाथी को मार दिए। सोच ही रहा था, इतने में ही देखा कि मेन गेट पर दिखाई पड़े, कौन दिखाई पड़े, अभी दोनों बालक हस्ती दंत हस्ता हो करके, और साथ में पूरे साथी पलटन के साथ गेट पर आ गए, मेन दरवाजे के अंदर घुस गए हैं। जैसे दरवाजे के अंदर, गेट के अंदर आ गए, मुख्य दरवाजे के अंदर सब देख रहे, पूरे गैलरी भरा था, खचाखच भीड़ था, हर एक मंच, सभी का दृष्टि उनके ऊपर जा रहा, सबके पहले नजर पड़ा वो मल्लों का, बोले हमारा पाली आ रहा है, रुट हमारा टर्न है, अभी सबका गया, मैं हमारा टर्न ही है भाई, कुबलिया पेड़ के बाद लाइन हमारा है। तो सबसे पहले उनका नजर से आवाज सुनाई पड़ा था, अभी तक उन्होंने घंटों से व्यायाम ही कर रहे थे, बाला बाजा बज रहा था, व्यायाम कर रहे थे, इतने बड़े बड़े मसलदार थे, इतने व्यायाम करने के बाद भी पसीना नहीं उतरा था उनका, धूप उठ गया था, दस बज चुका था, लेकिन वो गेट पर उनको देख रहे, देख करके धमधम पसीना उतर गया, अब व्यायाम भी बंद हो गया उनका, दंड बैठ के छूट गया, ऐसे पसीना उतर लगा देख करके। सबसे पहले नजर तो उनका ही पड़ा। जब वो दोनों बालक आ करके ऐसे वनमाल्या पहने हुए हैं, पीत वस्त्र नील वस्त्र पहने हुए हैं, अपने केस को थोड़ा पीछे हटा करके कान के पीछे कर दिए हैं, बस आके खड़े हो गए हैं, पूरे शरीर में जहां तहां गजमद और रक्त के चिन्ह लगा हुआ है, स्पष्ट बता रहा कि अभी अभी मर्डर करके आए हैं, हाथी को प्रमाण है, फ्रेश ब्लड लगा हुआ है। अब सबसे पहले मल्लों का नजर पड़ा, सुखदेव गोस्वामी रह नहीं पाए, उनने बोलने लगे मल्लानाम असनी, बोलते हैं मल्ल को दिखाई पड़ा क्या, असनी मतलब वज्र, मल्ल देखते हैं कह रही उनको लड़के की तरह दिखाई नहीं पड़े, उनको दिखाई पड़ा बाप रे बाप, कितने लंबा चौड़ा, उनका शरीर कौन सा मटेरियल से बना है, हमारा तो मांस चर्म हड्डी से बना है शरीर, उनका तो लगता नहीं, लोहे की चांदी की कौन सा और मटेरियल में बना है, वज्रदेही जैसा। मल्लानाम असनी निणांग नरमरो स्त्रीणांग स्मरोक, बोलते हैं कि मल्लों को तो दिखाई पड़ा कि महावज्र जैसे वज्र शरीर उनका, महामल्ल है, निणांग नरमरो जो साधारण नागरिक थे मथुरावासी वो सब खड़े हुए, हाँ हमारे स्वामी हमारे देवता भगवान वासुदेव अभी पधारे, हमारे देवता वही हैं, उनको इसे दिखाई पड़े, सब हाथ जोड़ दिए, मुंह में अस्पष्ट स्तुति निकल पड़ा, मल्लानाम असनी निणांग मरमर स्त्रीणो स्मरो, जितने स्त्रियां बैठी थी पूरा लेडीज गैलरी, उनका हाल दूसरा हो गया। सारे स्त्रियां ने देख रहे हैं, बोले हम तो सुने थे कि कामदेव एक था, लेकिन ये दो रूप में, एक काला एक गोरा, दो रूप में साक्षात कामदेव है। स्त्रीणांग स्मरो मूर्तिमान, साक्षात कामदेव एक गौर साम रूप में मूर्तिमंत होकर के खड़ा है आकर के। क्या रूप, एक एक अंग से अनुपम अनंग दिखाई पड़ रहा है। उनका तो बेणी से फूल खिसक गया, तो उनका बिल्कुल शरीर पसीना से भीगने लगा। वो तो बिल्कुल हाथ जोड़ के मानो अभी भूल गए, कोई हमको देख रहा है, हम कहाँ बैठिए, क्या कर रहा है, कोई चिंता नहीं। एक टक मन में केवल यही चिंतन कर रहे हैं कि हे कुमार दया, एक बार हमारा और झांकी देख लो, बस हम धन्य हो जाएंगे। एक बार हमारा और देख लो, दृष्टिपात कर लो। बड़े कातर प्रार्थना मन में कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, साक्षात मूर्तिमान कामदेव की तरह, एक नजर केवल देख लो, हम तो तृप्त हो जाएंगे, बाकी तो हम आपके पास नहीं जा सकते। ये दासी कुबड़ी त्रिवक्रा का इतने भाग्य हुआ, हम लोग तो पूर्व नारिया है, नहीं जा पाए, हमारे दुर्भाग्य। लेकिन कम से कम आप द्वार पर खड़े एक हमारा और तो एक दृष्टि तो डाल दो, देख लो हमको, बस हम कम बन जाए। ऐसे अर्थ दृष्टि से देख रहे थे, हाथ पुकार करके मन रहे थे, स्मरो मूर्तिमान। गोपानंग स्वजनों, जो बड़े बड़े गोप थे, ओ बोले राम सामत आए, अपना ही है तो, अपने दोनों लड़के हैं, वो आए। गोपानंग स्वजन हो, अपना है, ए इधर आना, हाथ उठा करके, हम इधर बैठे हैं, देख रहा ना, नहीं इधर इधर है, उनको इशारा कर रहे हैं। गोपानंग स्वजनों, और सतांग खीति भुजंग, जो असत राजाएं थे, कंस के अधीनस्थ राजा, वो लोग भी मंच के नीचे बैठे थे सब, कंस के सपट और बड़े बड़े बदमाश राजा, दुष्ट राजा सब, वो देख रहे हैं कि बाप रे बाप, वो तो दंडधर है, ये महावीर रूप में आया है, हम इतने बदमाशी किए, लगता है कि अभी स्टेडियम में ही कोर्ट बना के हम कुछ मांगेगा, ये काम किया है, क्यों किया, हमको पूछेगा, हम क्या करेंगे। वो भी सब खड़े हो गए, कान नाक पकड़ रहे हैं, सार और भूल नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे, माफी मांग रहे हैं, प्लीज एक्सक्यूज में ऐसे बोल रहे हैं। असतांग खिति भुजांग शास्ता स्वपित्रु हो शिशु, और जो पितृवर्ग थे वो बोलते हैं, उनका दया आया, आहा हा, बालक काल भी लेट में आए, आज भी सुबह खाए नहीं, आज शिवरात्रि है ना, फाल्गुना कृष्ण चतुर्दशी है, शिवरात्रि की फास्टिंग है, अब बेचारे खाए नहीं, हम पहले से आ गए, थक गए होंगे बेचारे, वो हाथी के साथ लड़ाई किए, उनका दया आ रहा है, शिशु है, हमारे बच्चे तो हैं, उनको बच्चे जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, सपित्र शिशु, बाछल्य उमड़ रहा है उनका। और कंस भी देख रहा है, उनको क्या दिखाई पड़ रहा है, मृत्युर भोजपति, कंस तो देख रहा है मेरे साक्षात मृत्यु खड़े हुए आकर के, ये कोई बालक नहीं है, कौन है, मेरा मृत्यु हुई है, मृत्युर भोजपति, भोजपति की मृत्यु जैसे दिखाई पड़ रहा है। विराट विदुषंग, जो बाकी अनपढ़ मूर्ख लोग थे, वो लोग देख रहे हैं, बाप रे बाप, इधर से उधर ऊपर से नीचे बांस डा, कितने विशाल रूप है, कौन है ये, उनको देखता विराट, बोलते विराट रूप है, वो विराट रूप सोच रहे हैं। विराट विदुषंग तत्तंग परंग जोगी नाम, जो गर्गाचार्य आदि जोगी लोग थे, वो तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाँ हाँ, साक्षात परमात्मा ही विराजमान है, ही परमात्मा है। और तत्त परंग जोगी नाम वृष्णी नांग परदेव तेति विदितो, और जो वृष्णिवंशी जदुवंश थे, बोले ये हमारे स्वामी, वही जदुवंश कुलनाथ, वही अभी आ गए, अब जदुवंश को रक्षा करने वाले रक्षाकर्ता के रूप में हमारे देवता हमारे रक्षक आ गए। मृष्टिनांग परदेव तेति विदितो रंग गत साग्रज, रंग भूमि में अग्रज के साथ जब कृष्ण प्रवेश कर रहे थे, हरेक प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार के दर्शन हुआ करता था। हे तो ही थे, कहते हैं कि 10 रस है, जितने लोग बैठे थे सबको अपना अपना अलग अलग रस में, किसी को श्रृंगार रस, किसी को अद्भुत रस, किसी को भय रस, किसी को वीर रस, किसी को रुद्र रस, विभत्स रस, बिल्कुल अलग अलग रस के सब आस्वादन करते थे। इस प्रकार पधारे सारे लाखों संख्या में नर नारी जो बैठे हैं, कोई साउंड नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, सभी का आंख ही पलक विहीन होकर के देख रहा है गेट के ओर, बिल्कुल देख रहा है, जैसे मानो सुखदेव जी कहते हैं ऐसे देख रहे हैं मानो अपने आंख से उन दोनों लड़के को पी जाएंगे, बोले देखने के नहीं पी जाएंगे उनको, तो ऐसे ही देख रहे थे, पित्वा आपने नयन की माध्यम से पी जाएंगे उनको, पास तो नहीं उठकर जा सकते, क्या करें, खाली पीने से होगा, ऐसे देखते थे मुंह खोलकर, जीवा में चाट जाएंगे उनको, आंख में पी जाएंगे, जीवा से चाट जाएंगे, बाहों से उनको आलिंगन कर ले, नासिका से उनके शरीर को सूंघ ले और पूरे शरीर उनके चरण में समर्पित करके दंडवत प्रणाम कर ले। सभी ने इस प्रकार की भावना करते हैं इन दोनों को देख करके, इस विचित्र दशा सबका है अलग अलग प्रकार के। इस दशा से जब खड़े हो रहे हैं, वो बालक दोनों खड़े हैं अपने साथियों के साथ, वो नजर लगा रहे हैं कहाँ है हमारे साथ, गांव के लोग सो कहाँ हैं, हम कहाँ बैठेंगे, जो सब आते थे दर्शक, सब सिक्योरिटी थे, पुलिस थे, सब आप इधर जाओ, इस साइड में जाना, उनके लिए कोई बोलने वाले भी नहीं, जो बोलने वाले पुलिस वो भी देख रहे हैं, हम क्या कर, कौन बताएगा, कौन सा ही साइलेंट है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो सब साइलेंट थे। थोड़े समय इस प्रकार सबको अद्भुत दर्शन दे करके फिर आगे बढ़ने लगे, नजर पड़ गया ओ बाबा जी अगर इधर बैठे इधर चलते, जैसे 2 कदम बढ़े कंस चिल्लाने लगा, बंद करो बाजा बंद करो, हैं क्या कर रहे हो दोनों, बाहर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, बंद करो उनको बुलाओ, चाणूर मुष्टि को आप क्या कर रहे हैं, आपका टर्न है अभी, बुलाओ उनको। वो तो डर रहे थे अंदर से, हाँप रहे थे कि उनका साथ उनको युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन राजा ऑर्डर कर रहा है, जैसे चाणूर मुष्टि से तैयार हुए बोले कृष्णा बलराम इधर आओ, क्यों हमारा साथ मल्ल युद्ध करना है, अरे हम आपका सर मल्ल, आप मल्ल सभा के महामल्ल है, हम तो ग्वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, छोटे छोटे शिशु हैं, आपके साथ कैसे हम लड़ेंगे, ना आप शिशु हैं, हैं? उनका सारी हिस्ट्री बताने लगे, ये किया ये किया, इसी अभी अभी 10,000 हाथी के बल वाला महागज कुमार गिराया अभी फिलहाल ही, बोलते हैं शिशु है, अरे ऐसे बात मत करो, हमारे महाराज के आदेश है, अपना जो भी काय मन वाक्य के द्वारा महाराज को अपने सेवा के द्वारा प्रसन्न करना ही धर्म है प्रजा का, अगर किसी भी प्रकार से महाराज को हम प्रसन्न करते हैं तो सभी का मंगल होगा, कल्याण होगा, तो इसलिए महाराज आदेश दे रहे हैं अभी मल्ल युद्ध करने के लिए, तो आ जाओ हम मल्ल युद्ध का प्रदर्शन करके महाराज को प्रसन्न करेंगे, यही हमारा धर्म होता है, आ जाओ। तो कृष्ण बोले देखो आप भोजपति की प्रजा है, कंस महाराज की प्रजा है, आपके काम है उनको ये करना, हम तो वनवासी हैं, हम गाय चराने वाले हैं, हम थोड़ी कंस की प्रजा है, हम उनकी प्रजा नहीं है, हम बाध्य नहीं है उसको करने के लिए, ना ऐसे कह करके मत जाओ, हमको लड़ना है आपके साथ, आप ताल ठोक दिए, ऐसे करते ना लड़ने से पहले, हाथ में ताल ठोके तैयार हो, तो कृष्ण को कुछ भी हो चुनौती बर्दाश्त नहीं होता, भले कुछ भी हो जाए, वो जो ताल ठोक कर तैयार हो ले आ जाओ देख लेंगे हमको, बोले अच्छा तू देख लेगा, हम इसी छोड़ देंगे, चुनौती कर चैलेंज करेगा हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छा से बात करता हम छोड़ देते, अरे नहीं जैसे चैलेंज किया तो दोनों ने गजदंत लिए थे वहीं रख दिए, दोनों हाथी के दंत को ही रख दिए, रख करके माला उतार के धर दिए, भी रख दिए और केस को पीछे से बांध दिए, बाकी कुछ नहीं किए, कचनी पचनी बांधो कुछ, चल दिए। जैसे चल पड़े सारे गैलरी से लोग चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है, घोर अन्याय, घोर अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बालक ये महामल्लों के साथ, वज्र काय मल्ल है उनके साथ लड़ाया जा रहा है, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। पुलिस लोग उठकर डांटे, साइलेंट साइलेंट, राज आदेश जो है वही होगा, आप लोग से चुप बैठे। सारी स्त्रियां बोले ये क्या हो रहा है, उसको कैसे देखकर कोई सहन करेगा, इसी अन्याय अपराध को जो सहन करेगा उनको भी दोष लगने पड़ेगा, ये बिल्कुल नब किशले से कोमल सलोने लड़के हैं, उनको ही वज्रकाय मल्ल के साथ लड़ाया जाएगा, कौन सहन करेगा, कौन देखेगा उसकी इसके आंख में, इतने निष्ठुर है ये राजा, तो हमारा राक्षस है लेकिन बाकी सभासद तो हैं, क्यों नहीं प्रतिवाद कर रहे हैं, लेकिन कौन प्रतिवाद करे। राजा आदेश हुआ, तुरंत बाजा बजने लगा मल्ल मारू में, लड़ाई के ध्वनि में बाजा धम धम बजने लगा और वो आखेड़ा में पहुंच चुके थे, दोनों दोनों को चुनौती दिए। जब कृष्ण बलराम पहुंच चुके थे, कृष्ण के साथ चाणूर, बलराम के साथ मुष्टिक, वो महा योद्धा आ चुके थे। अब मैच होने से पहले हाथ मिलाते ना दोनों, जब हाथ मिलाने आए चाणूर कृष्ण के साथ, मुष्टिक बलराम के साथ हाथ हैंडशेक किए, जब हैंडशेक कर रहे थे उनको लग रहा था हाथ है ना कोई प्लास है, प्लास में कोई दबा रहा है, प्लास होता ना पकड़ में कस कर कोई दबा दे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, लेकिन शर्म के मारे किसी बोल नहीं रहे थे, इतने आतुर जंत्रणा होता था, हाथ छट छट कर रहे थे, अरे छोड़ो रे हैंडशेक इतना हो गया, छोड़ो टूट गया उंगली सब, और क्या करना उंगली हड्डी सब टूट गया, कल हैंडशेक करते ही। ओ तो बोले अब क्या लड़े, उनसे नहीं लड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, लड़ना ही पड़ेगा। इष्ट स्मरण करके अपने कोच जो थे उनके गुरु जी कूट, वो दो थे लड़ो मैं हूं ना पीछे, तो गुरु जी पीछे खड़ा ही है बिल्कुल दो फुट पीछे, तो गुरु जी से सम्मान लेकर के आशीर्वाद लेकर के लड़ने के लिए आगे आ गए, हाथ से हाथ पकड़ लिए, सर से सर टकराता है, छाती से छाती टकराता है, बाहों से बाहों टकराता है, पर से पर टकराता है, वो उसको खींच खींच कर लेते हैं, वो उसको खींच कर लेते हैं, वो इसको पटकाते हैं तो वो उसको पटकाता है, धस्ता धस्ती ठेला पेला चलने लगा उस मल्लस्थली में, सब देख रहे हैं। कुछ समय तक आपस में पंतरा बदल कर चलने लगे, और चाणूर मुष्टिक सोच रहे हैं, वो बहुत विशेषज्ञ थे, चाणूर तो बड़े कुख्यात था, पूरे राज्य में कोई भी प्रतिद्वंदी मल्ल आए उनके साथ लड़ने के लिए उनको अन्याय में मार देता था, नियम के अनुसार नहीं, इधर उधर पटक कर मार देना उसका बड़े इसलिए प्रसिद्धि था उसका, तो सब जानते थे राजा आदेश दिया बिल्कुल स्वच्छंद, कोई नियम नहीं, किसी प्रकार से लड़ सकते हैं, लड़ना है बस, तो और उनको साहस मिला, बिल्कुल हर कायदा में उनको पटका कर मारना चाह रहे थे, लेकिन आश्चर्य हो रही दोनों बालक गाय रखने वाले हर दाव के पेंच के काट रहे हैं, उनको पता है कैसे काट करेंगे उसको, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब कर पा रहे तो नहीं कुछ नहीं है, कभी कभी यो उनको दबा रहे हैं, कभी कभी कृष्ण उनको दबा रहे हैं, जब दबा रहे लेकर के ऐसे लग रहा है कि उनके छाती के हड्डी पसली सब चूर 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 चरमरा जाता है, सब गया। अब जाके ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में देखाएंगे तो कोई सर्जन उनको ऑपरेशन भी नहीं करेगा, बोले हड्डी है ही नहीं क्या करें, विशाल शरीर है ये, छोटे छोटे बालक उनको ऐसी दबा करके सारे हड्डी पसली एक कर दिया। कुछ समय तक चला, जब लड़ाई चल रहा था वो इधर उधर था तो कंस महाराज ऊपर से बैठ करके इधर देख रहा था, कोई साइड हुआ फिर देख रहा था, ऊपर उठ के देख रहा था, जब कभी कृष्ण नीचे गिर रहे थे साइड होकर बैठता था, जब वो उनको पूरा हताश होता था, ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे झोंक रहा था, जैसे कंस इधर हिलचल उधर उधर कर रहा था, ये सारे गोप सखाओं ने बाजू में बैठे थे वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, इधर कर रहे थे, कब कैसे करते, कब हाथ उठा रहे थे, कब मुट्ठी बांध रहे थे, कभी छोड़ रहे थे, उनका भी प्रतिक्रिया उतना नजर कुछ नहीं, पूरा देख रहे, उनके सखा लड़ रहा है, सुकुमार सखा, नवनीत खाने वाला सखा, सबसे कमजोर वाले ये बड़े बड़े बुल्ला के साथ लड़ रहा, तो इसलिए कर रहे थे, कर्नू बुलाना मुझे, मैं पीछे हूं, चलूंगा साथ, देख लूंगा साले, देख लूंगा साले को, बुलाना मुझे। अब सब देख रहे हैं कि महा अन्यार, उनको तो लग रहा है कि इसे कमर कस रहे हैं, नखा बांध रहे हैं, लेकिन बच्चों ने देखे कि कृष्ण के मस्तक से बिल्कुल पसीना के बिंदु आ गया, मुख में पूरे पसीने के बिंदु, राम जी का श्याम जी का दोनों के चंद्र मुख में पसीना आ चुका है, बिल्कुल मुख अरुण हो चुका है, लाल पड़ चुका है, इतने सुंदर दिख रहा था उनका ऐसे सोदयुक्त मुखचंद्र की देखने बनी। लेकिन सारे साथी बालक बोले, अरे कोनू तो थक गया, दाऊ तो चलो ठीक है संभाल लेगा, तो बड़े हैं, ये तो सबसे छोटा कुमार है, थक गया, अरे ए आओ मैं जाता हूं आपके जगह में, आ जाओ। अब तो भद्र खड़े हो गया, सबसे छोटा नन्हा सा शिशु, अब 4 साल का 5 साल का बालक है, उनको सहन नहीं हो रहा कि उनके सखा पसीना उतर रहा है, थक गया है, वो तो आपने तैयार होकर के, अब ये बेचारा 5 साल का लड़का क्या है उनके सामने, लेकिन वो दांत चुबा करके और सहन नहीं हुआ, मैं उतर पड़ूंगा अखड़ा में, तू बैठ जा मैं जाता हूं। कृष्ण के नजर पड़ा कि भद्र उतावली हो रहा है, अब तो खेल खत्म करना चाहिए, नहीं तो आ जाएगा मैच पर फिर। तो उनके व्यग्रता को देख करके भगवान बोले, चलो बहुत हो गया खेल, अभी करते ना, अभी तू बैठ मैं आ रहा हूं। तब थोड़ा कस करके अभी कुश्ती लड़ने लगे। अब तो चाणूर लड़ नहीं रहा था, अपने आप को बचा रहा था, लड़ना चाहता भी नहीं था, अब तो बचकर भाग जाना चाहता था, लेकिन बचेगा थोड़ी छोड़ रहे हैं, कोई कृष्ण के पंजे में आए तब फिर छूट जाए, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी, तो आ क्यों रहा, तू ही नहीं बुलाया, वो तो जा रहे थे अपने जगह पर, तूने बुला कर उनको अपने कायदा में लिया, अब तो छोड़ेंगे नहीं। बेचारा कैसे कदर करके बड़े मुश्किल से पंजा छूट गया था, छूट करके धूम कर कूद कर जाकर थोड़ा किनारे होकर बैठा, ओह किनारे होकर बैठा, थोड़ा सांस ले, सांस पूरी भी नहीं होने दिया, जंप किए उनके ऊपर जाकर के, बोला मेरे सांस भी नहीं पूरे होने दिया, आ गया उछाल करके खड़ा हुआ। अब बोला जो भी हो, पूरे जीवन की प्राण अभी जाए चाहे बचे, पूरे शक्ति लगा करके दो हाथ में मुष्टिका करके उनके बख्य स्थल में कृष्ण की कस करके प्रहार किया। यद्यपि मल्ल युद्ध में गुस्सा नहीं मरना चाहिए, मुष्टिका हाथ अन्याय है, लेकिन बोला न्याय अन्याय छोड़ो, अभी मर ही जाऊंगा, मुझे भागने भी नहीं देता, मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे पकड़ रहा है, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, तो फिर भी मुझे जबरदस्ती पकड़ रहा है, क्या करूं, अब मुझे जो दबा रहा है मेरे से, मेरुदंड टूट गया, छाती भी टूट गया, हड्डी फड्डी कुछ नहीं, हाथ मिलाकर से उंगली भी तोड़ दिया था, अब तो जो है पूरी ताकत फुल फोर्स लगा करके खूब जोर से मुष्टिका घात किया भगवान के बख्य स्थल पर। सारे लोग देखते थे, बोले क्या क्या क्या, वो मुष्टिका घात किया, भगवान को लगा उसकी मुष्टि जैसे कोई बहुत सुंदर गुलाब और ऐसे फूल का एक स्तबक स्तबक बनाएगा, क्या बोलते हैं उसको, फूल का गुच्छा, पुष्प गुच्छ बना करके एक महामत हाथी को कोई फेंके तो उनको कितना कष्ट होगा, बहुत जोर से लगेगा ना, ऐसा ही लगा उनको, ऐसा ही लगा, लेकिन उन्होंने आसान से उन्होंने दोनों हाथों को पकड़ दिए, मुट्ठी बंधे बंधे दोनों हाथों को पकड़ लिए, पकड़ करके बोले बहुत हो गया, अब पकड़कर खींच लिए, उनका दोनों पैर उठ गया, अब घुमाने लगे ऊपर से, ऐसे ही ऐसे ही घुमाने लगे, घुमाने लगे, घुमाने लगे, घुमा कर इसे धोबी मैले कचड़े वस्त्र होता ना ज्यादा, अब बहुत पानी में भिगा करके उठाकर पत्थर के ऊपर तो हाथ पिटता ना, ऐसे उठाकर दे पटके दुम, पहले से तो हड्डी फड्डी सब टूट टड़ गया था, अभी फाइनल दुम करके गिरा, बेचारा कोई साउंड फाउंड कुछ नहीं कर पाया, भक भक करके मुंह से रक्त निकल पड़ा, समाप्त, शांत हो गया, कुछ नहीं कर पाया बेचारा, गिरा दे पड़ गया। जब उनका श्याम का खेल खत्म हो, मैच ओवर हुआ, तो राम बोला भी मैं भी खेल खत्म कर देता हूं, तो वो भी वही हाल था मुष्टिक का भी, वो भी भागना चाह रहा था बेचारा, उनका भी हाल खराब था, तो देखा कि छोड़ नहीं रहा, वो भी एक वज्र मुष्टिका मारा भगवान को, मुष्टिका ऐसे मारने लगा, बलराम गुस्से हो गए, बोले मैं मल्ल युद्ध में सिखाऊं, ये कौन सा नियम से विरुद्ध युद्ध कर रहा है, मल्ल युद्ध करने कुश्ती क्यों मार रहा है, मुष्टिघात क्यों कर रहा है? वो मुष्टि का आघात करने से पहले भगवान ने एक तमाचा चढ़ा दिया उसको, बोले तू मुक्का मारे मुक्का मारेगा मैं तमाचा मारूंगा। एक कानपट्टी पर एक तमाचा लगा दिया, तड़प करके साउंड हुआ। ये साउंड हुआ तो अब कई लोगों का झंझना निकल पड़ा। झंझना क्या निकल पड़ा? कंस के सर से मुकुट निकल करके मल्ला अखाड़े पर झन करके गिरा जा करके मुकुट निकल पड़ा। तो इतने जोर से क्यों? देख रहा था ना, ऐसे ऐसे को देख रहा था। जैसे ये गिर के मर पड़ा, हताश हो चुका था, उनको जैसे मुक्का उठाने बोला मार देगा मुक्का में शायद मुष्टिक ने, लेकिन इतने जोर से तड़ाम करके चपटा मारे, इतने जोर से आघात पड़ा, इतने जोर से कंस झुक करके देखा, पूरा मुकुट झन करके गिरा जा करके नीचे। ये 10 हाथ ऊपर से बैठा था, इतने ऊपर से मुकुट राज मुकुट खिस गया। ऐसे ऐसे बाल में हाथ लगाया, हाँ मुकुट तो पास में था नहीं, क्या आगे थोड़ा दोबारा लगाएगा। चलो जो भी बैठा, अब एक कनपट्टी में तुरंत उनका सर फट गया, एक चपटा से सर फट गया, नाक से और मुख से दोनों से होश पाए, एक तरफ ब्लड निकला, ब्लड निकला और शांत हो गया, गिर पड़े। थोड़ा सा छटपट छटपट हुआ, फिर शांत हो गया। वो तो बेचारा कुछ छटपट भी नहीं हो पाया, चाणूर ने निशब्द कोई साउंड नहीं कर पाया, कुछ हाथ पर पीट नहीं पाया, वो बिल्कुल साइलेंटली मर गया। अब दोनों पड़े हैं, अखड़ा स्थली का लगभग कुछ अंश रक्त के से खींच बन चुका है, बहुत मुलायम धूल था, रक्त में बिल्कुल कीचड़ बन चुका है। अब दोनों खड़े हैं, अब कंसु आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है क्या हो रहा है उसको। तो पीछे ही खड़ा था उनका मास्टर, मल्ल का जो मास्टर था कूट, वो खड़ा था, गुस्सा में दांत चुबा करके इतने गुस्सा प्रचंड हुआ, क्या मेरे इंस्टीट्यूट के 2 महामल्ल को मार दिया तूने, मेरे इंस्टीट्यूट का बदनाम करेगा। वो कूद पड़ा, जैसे कूद पड़ा वो मुष्टि का घात करने के लिए कूद पड़ा, कूदने के लिए टाइम ही नहीं दिया बेचारा, हाथ उठाएगा मारेगा इतना अवकाश ही कहां था। आते ही बलराम ने उठा करके एक मुक्का उनके सर में जमा दिए, जैसे घड़ा देखा ना, घड़ा मिट्टी का घड़ा पकाया नहीं गया, कच्चा घड़ा हो, उसको कोई एक बहुत बड़े गदा में कोई पीट दे, क्या होगा? एक महामुदगर एक कच्चा घड़ा के ऊपर पड़े, तो ऐसे ही एक हाथ धर दिए उनके सर के ऊपर, बिल्कुल चिथड़ा हो गया, सारे खिल्ली निकल पड़ा, हाँ सब अलग अलग हो गया, बिल्कुल कोई देखा नहीं उनके सर है या नहीं था, केवल धड़ था। वो कहाँ गया? कोई बाल था, सर था, कुछ ऐसे इस प्रकार का कोई वस्तु था, कुछ पता नहीं चला, ज्योग्राफी चेंज। हाँ अब तो वहीं पे साइलेंटली वो भी मर गया बेचारा। अब बचे गए थे वो 2 महामल्ल थे, सल और तुसल। तुसल ने बलराम के ऊपर गुस्सा करके दौड़ के आया, जैसे दौड़ के आया उसको भी ऐसे बलराम ने उठा के दे पटके, उनको भी टाइम नहीं लगा, भग भग कर रहा था करके वही गिर कर पड़ा। जो सल था वह कृष्ण के ऊपर आया, कृष्ण उसको पटक करके उसको एक डिजाइन से मारे, उनके एक पैर के ऊपर पैर रख दिए, दूसरे पैर को वो उठा करके फाड़ दिए, बिल्कुल 50-50% 2 भाग कर दिए शरीर, सम भाग में 2 खंड करके फेंक दिए। पूरे अखड़ा स्थली अब पाउडर नहीं, बिल्कुल कीचड़, लाल लाल रक्त से, सभी देख रहे हैं। कंस के मल्ल सभा का मुख्य 5 महामल्ल 5 डेढ़ बड़ी 6 खंड में पड़ा हुआ है, 5 शरीर था लेकिन 6 खंड पड़ा हुआ है, एक शरीर को 2 भाग कर दिए थे, बाकी सब एक खंड में 6 डेढ़ बड़ी के साथ पड़ा हुआ है। तब कंस सहन नहीं कर पाया, उठ करके खड़ा होकर चिल्लाया, निकाल दो उनको बाहर, जल्दी निकालो उनको। लेकिन जब मैच शुरू हुआ उससे पहले कंस ने ऑर्डर दिया था सारे गेट बंद कर दिया जाए, क्यों? कोई भाग कर नहीं जाए, सारे बच्चों को उन बालों को सब मार देना चाहिए, सारे गेट बंद करके चाबी जाकर यहां डिपोजिट करो, कोई खोली ना पावे, सारे गेट बंद कर दिया था। लेकिन अब भी खड़ा होकर चिल्ला रहा है, अभी जितने और बच्चे कुछ मल्ल थे मल्लशाला में, जैसे सल को भगवान ने उठा करके इसे फाड़ दिए, वो धड़ाम से कबाट तोड़े भागे, जो दरवाजा लगाया गया था ताला, ताला को तोड़ करके गेट तोड़ करके भागे, भागे जे बिल्कुल भागे, कोई देखा ही नहीं। दूसरे दिन मथुरा में तो देखे नहीं, मथुरा से आउट, बिल्कुल सिटी से बाहर चल पड़े। बोले बाप रे बाप, उनके जीवन में और कभी मल्ल युद्ध करेंगे नहीं कि मल्ल स्थली को जाएंगे भी नहीं देखने के लिए। बोले इसे भी होता है? अरे बाप रे बाप, उनको लगा हम सुने हैं ये राम श्याम दोनों भूभार हरण करने के लिए आए हैं, वो हम लोग तो डेढ़ डेढ़ क्विंटल वाले हैं, हम भारी वजन है, हमको ही सदा पहले से मारेंगे। सारे भाग गए मथुरा छोड़ करके। तो कंस ने इतने पागल हो गया, खड़े होकर चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उनका आवाज सुनने वाले, उनके आदेश पालन करने वाले कोई है कि नहीं वो देख नहीं रहा था। चिल्ला रहा था जल्दी निकाल दो उनको, जल्दी निकाल दो, सारे बच्चे को निकाल दो, हटाओ यहां से। कौन निकालेगा, गेट तो सब बंद है, एक गेट पीछे से तोड़ करके आपके मल्ल से भाग गए, बाकी तो कोई निकालने वाला भी नहीं, निकालना संभव ही नहीं है। देखा कोई उनका आदेश नहीं मान रहे हैं और बाजा अभी बज रहा है। वो कम से चिल्ला रहा था, लेकिन वो कृष्ण बलराम दोनों खड़े हो गए। बोले और कोई है आने दो, इसे बुलाते ना इसे मैच में जीत करके, इसे इसे कोई और आने दो, कोई आने वाले है, कोई तो थे नहीं। तो बाजू में बैठे थे उनके जो गोप बालक, वो कूद पड़े, अरे ये पांच राक्षस को मार दिया क्या, बड़ा वीर हो गया, लड़ो मेरा साथ, अभी देखता हूं तुझे। सारे बालक लग गए लड़ाई में, लगे तो एक दूसरे को पटकाता है, धक्का देता है, गिराता है। जब एक कोने पर सारे बालक मल्ल क्रीड़ा में लगे, सारे दर्शक बोलते हैं कि अभी असली मल्ल क्रीड़ा तो अभी दिखाई पड़ रहा है, ये देखने लायक है कैसे आपने अपने समास्कंद से मिल करके लड़ रहे हैं। लेकिन कंस को सहन नहीं हुआ, तुरंत बोला वाद्य बंद करो, बाजा बंद करो, सब मर चुके हैं, अभी बाजा बजा रहे, वो खेल रहे हैं। लेकिन वो लोग बाजा बंद कर दे, लेकिन ऊपर से देवता लोग बाजा बजा रहे थे, उनका बाजा चालू था, उसको कैसे बंद करे, वो तो उनका ऑर्डर में थे नहीं। लेकिन इतने जोर से चिल्लाया, देवता लोग भी अपना बैंड बंद कर दिए। तब पागल होकर के चिल्लाया कि जल्दी से उनको निकाल दो बाहर, ये वसुदेव के पुत्र बड़े दुष्ट है, वसुदेव को तुरंत मार दिया जाए और जितने नंद और ब्रजवासी है उनके सारे संपत्ति लूट दिया जाए, उनको ही मार दिया जाए, उग्रसेन को मार दिया जाए। सारे उनका बकबक करके बोलते जा रहा था, सारे ऑर्डर दे रहा था, ऑर्डर कोई काम भी होता है कि नहीं, कोई देख नहीं रहे थे। बच्चे कौन था ऑर्डर पालन करने के लिए, सारे सैनिक तो पिछले दिन रात को मर गए थे सेनापति के साथ, बच्चे कुछ है उनके मल्ल थे, हाथी था, हाथी भी सुबह गया, जो मल्ल थे वो पांच सामने पड़े हुए डेड बॉडी उनके, बच्चे कुछ मल्ल थे दरवाजा तोड़कर भाग गए, फरार हो गए। और बाकी है कौन, जो थोड़े बहुत पुलिस सिक्योरिटी है वो बेचारे, उनको क्या, जब देखें कि ये कच्चा घड़ा की तरह ये महाविशाल बज्र का कूट का सर चूर हो गया, तो उनका सर का शरीर के ऊपर सर किसी का है कि कच्चा घड़ा की तरह मार देने के लिए, अभी अभी मरने की उतावली कौन है? कोई उनका ऑर्डर सुनने के लिए तैयार नहीं आज, कोई उनका ऑर्डर सुनने के लिए, बोले हम ड्रेस चेंज करके भाई बैठेंगे हम जाकर, हम इस्तीफा देने के, सब अपना ड्रेस उतारने वाले थे पुलिस लोग सब। अब जो सिक्योरिटी पुलिस कस्टडी में थे वसुदेव और उग्रसेन के बाद में, वो भी अपना अपना ड्रेस चेंज करके बड़ी कड़ी उतार कर बोले सर कोई आदेश, बिल्कुल परिस्थिति बदल गया, अब तो दशा बिल्कुल उल्टी हो चुका है, कोई उनका आदेश पालन करने वाले नहीं है। लेकिन इतने गालियां बक रहा था उन्होंने, सारे बालक लोग को सहन नहीं हुआ, कौन इतना चिल्ला रहा है, अपने बाबा को गाली दे रहा है, अपने सखाओं को गाली दे रहा है। सारे बच्चों ने अपने अपने लकुट उठाकर बोले फेंकेंगे, लेकिन इतनी ऊंचाई में बैठा था वो लाठी भी नहीं जाएगा वहां तक। तो बलराम जी का मुख अरुण हो गया, बोले उनके बाबा को गाली दे रहा है, उनको मजा चखाता हूं अभी। बलराम जी कुछ दो पैर आगे बढ़े, लेकिन इतने से कृष्ण को मोड़कर देखे कि कानू क्या कर रहा है, कानू और थोड़ी इधर है, वो दौड़कर जा चुका है, जा करके सबको देखते देखते दे छलांग मारा, एक छलांग मारा जाकर सीधा मंच के ऊपर, इतने ऊंचे में पहुंच गया। जैसे पहुंच गया कंस घोर चिल्लाया, ई आ गया, आ गया मेरे पास, मेरा काल आ गया, मेरा मृत्यु आ गया। तुरंत ढाल तलवार साथ में लेकर के खुद पड़ा, एक साइड में जाकर खड़ा हो गया। खड़ा होकर तो पैंतरा लेने लगा, युद्ध से पहले पैंतरा लेता ना अपना पोजीशन, पोजीशन बदल करके यहां मारता है यहां मारता है, लेकिन मारता तो तभी वो पहुंच गया, तब उठा करके मारेगा, इतने टाइम तो चाहिए। इतने टाइम के बीच से उनके केस मुकुट तो पहले से गिर चुका था, खुला केस थे, पकड़ ले बाएं हाथ में, बाएं हाथ से केस को पकड़ कर खींच कर एक धक्का पीछे से मारे, धड़ाम कर नीचे जाकर गिरा हुई अखड़ा स्थल के पास में गिरा करके, ऊपर से नीचे गिरा, धड़ाम से नीचे गिरा, और गिरते ही ब्लड वोमिटिंग किया था उन्होंने, रक्त बमन कर लिया था, मर चुका था, ऊपर से जो उठाकर फेंक दिया तब मर चुका था उसको, ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका था ऊपर से ही, और उनके डेड बॉडी को उठाकर फेंके उसी ब्लड निकल आया था, सारे आंख निकल आया था, ब्लड निकल गया, लेकिन भगवान के गुस्सा इतना था, वो भी उनके पीछे पीछे उनके ऊपर से कूदे, कूद करके उनके ऊपर में पड़े, छाती के ऊपर बैठ करके उनके केस को पकड़ करके कुछ मुक्के मारने लगे, डेड बॉडी और मर चुका था वो तो, ब्लड निकल रहा था, सारे आंख फाड़ निकल चुका था, इतने से उनका मन नहीं माना, इतने गुस्सा हो रहा था, तो कितने कष्ट दिया है मेरे भक्तों को, इतने मन नहीं माना, उठे बोले मेरे मां के केस पकड़कर खींचा था तूने बदमाश, उनके केस पकड़कर खींचे, पूरे मथुरा के जनपद के भरे हुए सर्वसाधारण नर नारी, आसपास के प्रदेश के कंस के अधीनस्थ सारे राजा सामंत मंडलेश्वर साहूकार सामंत सब बैठे हुए, सभी के सामने आज मथुरा नरेश महाराज कंस का डेड बॉडी को उन्हीं के भवन के बीच में, उनके रंगशाला के मुख्य भवन के बीच में सभी के सामने उनके सब को रक्त के साथ चोटी पकड़कर घिसटा जा रहा है, क्या घोर अपमान है। लोग बोले हाय हाय, कम से कम महाराजाधिराज थे भाई, थोड़ा राज के सम्मान तो देना चाहिए, ये अपमान, डेड बॉडी मर चुका है अब क्या करना है, लेकिन भगवान को तो गुस्सा आ रहा था, खींचते थे इधर उधर जा करके। कुछ लोग उठे, अब क्या उठेंगे, भगवान का रोष इतने हो रहा था, आंख फड़क रहा था, इतने गुस्से में उसको इधर उधर खींच रहे थे कि कोई गोप बालक भी उनके पास जाना साहस नहीं कर रहा था। इतने में हठात क्या हुआ, सब निस्तब्ध साइलेंट देख रहे थे कि क्या दशा है, देखते देखते अभी सुबह से सुबह सुबह महामज गज मरा, कुबला पीढ़ महा हाथी 10,000 बल हाथी वाला मरा, उसका महामहंत मरा, आठ आठ रक्षक मरे, और पंच महामल्ल बाकी मल्ल तो फिरार हो गए, बाकी सिक्योरिटी अपना ड्रेस चेंज कर दिए, और महाराज स्वयं का ये हालत है, अभी अभी दोपहर भी हुआ नहीं है, फटाफट ऑल आउट, कोई बाकी नहीं रह गए, सारे विकेट गिर चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी थे। हठात राज के मंच से पीछे कंस के आठ भाई और थे, और नौ भाई थे, आठ भाई चिल्ला करके अस्त्र लेकर कूद पड़े, उनके भाई के डेड बॉडी को भी ऐसे ही कर रहा है राजाधिराज, हमारे भाई थे भ्राताश्री, सब दौड़ पड़े मारने के लिए, और उनके साथ में जो मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल, वो भी टूट पड़े, 10-20 आदमी कूद पड़े अस्त्र लेकर के। बलराम जी देखे उनके अनुज तो उनको लाश को इधर उधर कर रहा है, और वो लोग अस्त्र लेकर के बड़े क्रोध से दौड़ रहे हैं रेरेकार करके। अब वही पड़ा हुआ था गजदंत फिर उठा लिए, अरे भाई जहां एक दंडधारी जमराज एक दंड धारण करके पूरा तीन लोक कंपमान करते हैं, आज उनके मास्टर के मास्टर वो जब गजदंत पकड़े हुए हैं, वो उनका क्या करेंगे, कोई टाइम नहीं लगा, एक एक हाथ में सब धराशायी हो गए, कोई चैंचा साउंड नहीं, सब वहीं क्यों हुई, सब हथियार के साथ वहीं पलास गिर गया सभी का। जैसे सारे भाइयों का पूरा हो गया, वसुदेव जी सोच रहे थे कि कंस ने सोच रहा था आज सुबह सुबह, आज वसुदेव देवकी को कारागार से बुला करके उनके सामने उन्हें दो लड़का को मराऊंगा, दो लड़का को पिता के माता के सामने मरवा दूंगा। लेकिन क्या पता परिणाम क्या होने वाला था। स्वयं आपने नौ नौ भाई के, आठ भाई के साथ नौ पुत्र, उनके पिताश्री बैठे थे उग्रसेन, माताजी भी बैठी थी, उन्हीं के सामने सवंश नाश हो गए। दूसरे माता पिता का लड़का क्या मर, खुद ही मर गए सारे। अब पीछे से राजमंच के पीछे सब राज परिवार के जो स्त्रियां बैठी थी, आतुर चित्कार करके रोने का शब्द आया, सब रोने लगे फुट फुट करके। लेकिन पूरे सभा में निस्तब्ध सब देख करके त्रस्त हो रहे थे। अभी सूर्यास्त होने से पहले ही सारे खेल खत्म। मथुरा के राजाधिराज की ये दशा, पंच महामल मरे, इसे मरे, पूरे सभी के सामने रक्त की किच पड़ा हुआ है। देखते देखते सब डेड बॉडी ऐसे पड़े हुए हैं। सब हाथ जोड़ करके ये दोनों भाइयों को प्रार्थना कर रहे हैं, सबके हृदय भर करके सब अपने अपने बड़बड़ा करके खड़े होकर मरमरा करके स्तुति और प्रार्थना कर रहे हैं। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार, तुमार इच्छाए सृष्टि सृजन संहार, तुमार इच्छाए सृष्टि सृजन संहार। सब बोल रहे हैं कि आप ही परमेश्वर, सभी ईश्वर के ईश्वर हो, ब्रजेंद्र कुमार हो, आपकी इच्छा से ही सृष्टि होता है, प्रसंहार होता है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन,
तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन,
तब इच्छा मते शिव करे न संहार,
तब इच्छा मते शिव करे न संहार,
तब इच्छा मते माया सृजे कारागार,
तब इच्छा मते माया
सृजे कारागार, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण,
तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण,
समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल
चेष्टा
तुमार इच्छाए अछि निर्भर करिया,
तुमार इच्छाए अछि
निर्भर करिया, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार,
তুমি সর্বে সর্বে ব্রজেন্দ্র তোমারা।
इस प्रकार पूरी स्टेडियम में सारे दर्शक वृंद आपने अपने स्थिति के अनुसार हाथ जोड़ करके अपने अपने संबंध के अनुसार स्तुति कर रहे थे। सख्यात परम पुरुष विराजमान है। आज मथुरा के इतिहास में ये विपरीत दशा आ चुका है। अब कल आप सुनेंगे कि इस प्रकार स्थिति के बाद में फिर क्या हो रहा है। कंस की इस प्रकार बद्ध होने के बाद अब मथुरापुरी में क्या दशा हो रहा है। हरे कृष्ण।